Good evening and Om Shanti.
Chitra, audio visual.
I would request all the dignitaries on stage, they can take their seat on the stage, because the moment the governor, honorable governor comes, we will have the national anthem and then we'll start the session. So I will request our MD ECHS, IG Coast Guard sir. Respected Shukla Didi, stage par aaye Didi. Respected Karuna Bhai Ji, good evening and Om Shanti. We welcome all of you for the National Dialogue on Self-Empowerment and Mental Wellness. This is the reception and inaugural session, and we are very honored to have amongst us as our chief guest the Honorable Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Parnaik, sir. Before we start today's proceedings, I'll request we will have a 2 minutes of meditation. This is a drill that we practice here. We commence each program with a 2 minute silence, and after that, we'll commence today's proceedings.
बन जाए वो गुणवान ईश्वर से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान उच्च विचार शुभ कर्मों से उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से अपना जहान सुंदर रचता अपना जहान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान
Every year we have this annual program at Mount Abu, but this program is unique because, as most of you are aware, that 2025-26 we are celebrating as the Silver Jubilee year for Security Services Wing. Technically, Security Services Wing ki sthapna 2001 mein hui, lekin uska pehla annual program 2002 mein hua. To isliye hum 2025 aur 26 ko ek Silver Jubilee ke roop mein pure hi desh mein सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे फील्ड फॉर्मेशंस में प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन साल में ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां हम आप सबको यहां इनवाइट करते हैं सभी फोर्सेस के लोगों को बुलाते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज भी हमारे बीच में करीब 21 सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियां क्योंकि पूरे देश से कोने कोने से हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं आप सब जानते हो सबसे ज्यादा जो हमारे इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन होता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, और इस समय देश में करीब 4-5 स्टेट का, इस महीने में करीब 5 स्टेट्स के इलेक्शंस थे, उसके बावजूद हमारे बीच में पार्टिसिपेशन आए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में हमारी बहनें हैं वो डायस पे हमारे जो मेहमान हैं उनका स्वागत करें फ्लावर्स और बैजेस के साथ। हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक सर हैं, हमारे इस कैंपस के डायरेक्टर और जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी हैं, हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल राजयोगी बीके करुणा भाई जी हैं, इंस्पेक्टर जनरल टी शशि कुमार कोस्ट गार्ड से हैं, हमारे बीच में मेजर जनरल अनिल चंदेल एमडी ईसीएचएस हैं, हमारे बीच में हमारी रिस्पेक्टेड वाइस चेयरपर्सन आदरणीय शुक्ला दीदी जी, और हमारे बीच में हमारे चेयरपर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज विंग स्क्वाडन लीडर रिटायर्ड अशोक गाबा जी हैं, और दीपा दीदी जो विशेष मुंबई से आई। आप सबके स्वागत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिय भाई से कि वो एक सुंदर स्वागत गीत गाए। ऐसे तो इस कैंपस में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो उनके पास ये गाने की कला है, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित लोगों के लिए है तो हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, 1996 में कमीशन हुए और सदैव एक स्माइलिंग फेस से, आप लोग ने सब में देखा होगा कि हमारे शुरू में जब आए तो एकोमोडेशन अलॉटमेंट में इन्हीं का ही योगदान रहा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्वागत गीत हम सबके सामने रखें।
आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे। आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप सभी बहुत खास हैं, बहुत विशेष हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग भगवान को बहुत याद करते हैं और यहाँ पे भगवान आपको याद करते हैं, आप सबको यहाँ बुलाया है स्पेशली, तो प्लीज अपने लिए जोरदार तालियां।
शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से, मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन, परम पिता के प्यारों से स्वागत और सत्कार का मौसम हो, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, आप हमारे साथ चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना हो, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो स्वर कर्तन का नारा हो, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने मिलता कहीं अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास चौहान भाई का। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग 2001 में बनी और इसके निमित्त विशेष भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी बने। ये जो एकेडमी है ज्ञान सरोवर आप देख रहे हो, ये 1995 में बनी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी 1936 में एस्टैब्लिश हुई और तब से ये समाज के लिए कार्य कर रही। लेकिन जैसे जैसे ये संस्था बड़ी हुई तो ऐसा पाया गया कि समाज के अलग अलग वर्गों की जरूरतें अलग अलग होती है, तो ऐसे विंग्स बनाए और वो विंग्स स्पेसिफिकली उस वर्ग के लिए कार्य करे। उस उद्देश्य से इस एकेडमी का निर्माण हुआ और शुरू शुरू में बहुत सारी विंग्स थी, जैसे यूथ विंग है, महिलाओं के लिए विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, मेडिकल प्रोफेशंस के लिए विंग है। तो 95 से विंग्स के द्वारा ऐसे कार्यक्रम होते गए। 2001 में हमारे बीच में एक नेवी के वरिष्ठ अधिकारी आए, वो उस समय इंडियन नेवी के ट्रेनिंग को देखते थे, पूरे डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग थे कमोडोर बाजवा करके, वो कोई एजुकेशन के प्रोग्राम में आए और जब उन्होंने सारा ये प्रोग्राम देखा तो उन्होंने कहा कि आप लोग सभी वर्गों के लिए कार्य करते हो लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस फोर्सेस में होता है उनके लिए आप कुछ नहीं करते। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय अशोक गाबा जी हैं जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाबा जी, जिन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया है और करीब 1983 से समर्पित रूप से इस हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे। तो अशोक गाबा जी से जब मिले और उन्होंने कहा कि ऐसी आपको कोई विंग बनानी चाहिए जिसमें आप फोर्सेस के लोगों की सेवा कर सके, तब ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण हुआ। मैं उस समय एक यंग लेफ्टिनेंट था और मेरी पोस्टिंग INS विराट पे थी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर था समुद्र के बीच में, और अचानक मैं सिग्नल पैक में देखता हूँ कि उसमें एक सिग्नल आया हुआ था, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट माउंट आबू, वॉलंटियर्स कैन फॉरवर्ड देयर नेम। तो ये एक बहुत एक नई चीज थी क्योंकि फोर्सेस में कभी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन ऐसा उस समय कभी ऐसी बात कभी सुनी भी नहीं थी, कोई इस दिशा में सोचता भी नहीं था। और मुझे याद है जब मैं अपने कमांडर के पास गया, मैंने बोला सर मुझे जाना है, तो उसने डांट के भगा दिया, बोलता यू आर सच ए यंग पर्सन, स्पिरिचुअलिटीज आप क्या करोगे। सो दैट वॉज द काइंड ऑफ मेंटेलिटी। तो जब वो नेवी के कुछ अशोक भाई ने उनसे पूछा कि भाई हम विंग तो बना देंगे लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन के लिए कौन आएगा, तो उसने कहा मैं नेवी का डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग हूं तो मैं नेवी से नॉमिनेट करूंगा और मेरा ही काउंटर पार्ट जो आर्मी में है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी भेजे। तो हमारे पहले कोर्स में आर्मी और नेवी से कुछ ऑफिसर्स आए, करीब 25-30 ऑफिसर्स आए, और तब से, और उसका उद्घाटन CRPF के DG थे उस समय त्रिनाथ मिश्रा जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और तब से ये हर साल ये कार्यक्रम होता है। और ये मेरा सौभाग्य कि तब से मैंने इसका ग्रोथ देखा है और हमने देखा कि धीरे धीरे दूसरी फोर्सेस, दूसरी मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस, और अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे वेटरन्स हैं, डिफेंस सिविलियंस है, CGDA है, नेवल डिफेंस सिविलियंस है, बहुत सारे ऐसे और भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, इन लोगों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं, वो भी हमारे इस एनुअल प्रोग्राम में आते हैं। तो हर साल हम लोग एक 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, वीडियो का टाइम तो 10 मिनट ही होता है लेकिन हर साल हमारे प्रोग्राम्स इतने होते हैं कि उसी 10 मिनट में कवर करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, फिर भी एक प्रयास है कि 10 मिनट में एक छोटी सी जर्नी कि किस तरह से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग बनी और कैसे ये ग्रो हुई। और विशेष मैं एक इस साल का हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि जैसे कहा कि पिछले अप्रैल में हम लोग ने ये सिल्वर जुबली का ये सारा सेलिब्रेशन का के रूप में रखा और एक लक्ष्य रखा था कि हर दो महीने में सिल्वर जुबली है तो हमने सोचा हर दो महीने में हमारे 25 प्रोग्राम पूरे भारत में फील्ड फॉर्मेशंस में करें। तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि एक साल में करीब 150 प्रोग्राम्स का हमारा लक्ष्य था, बट सर मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक साल में 450 प्रोग्राम्स हुए पूरे भारत। बहुत सारे कैंपेन थे और आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट गवर्नर, रिस्पेक्टेड गवर्नर सर आए हैं, तो उसका भी एक श्रेय उसी एक कैंपेन में जाता है कि दिसंबर में एक नॉर्थ ईस्ट में कैंपेन था जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड में कैंपेन था, तो उस दौरान हमें एक मौका मिला कि सर से मिले, सर से हमने ये सेवाओं के बारे में बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आने वाले प्रोग्राम के लिए आप चीफ गेस्ट बन के आए। 2-3 साल से वहां के भाई बहन प्रयास कर रहे थे, बहुत बार इन्विटेशन मिला था, तो मैं समझता हूँ ये एक फैक्टर बन गया कि फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज हमारे बीच में है। तो हम एक 10 मिनट का ये वीडियो देखेंगे जिसमें ये जर्नी कैसे सिक्योरिटी सर्विसेज बनी और कैसे ये पूरे देश में सेवाएं कर रही है उसकी एक झलक देखेंगे। ओम शांति।
भारत एक महान राष्ट्र है जिसकी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है। यह देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है। वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हर एक देशवासी को है। वर्तमान में विश्व की अनेक बड़ी घटनाएं जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल ईरान या ऑपरेशन सिंदूर एक बात को स्पष्ट करती हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य में सुरक्षा बलों की, चाहे वह बाहरी सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल हों या आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस, इन सब की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण वर्ष 2001 में हमारे इन वीर सुरक्षा कर्मियों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में पहले ऑफिशियल कार्यक्रम का उद्घाटन DGCRPF श्री त्रिनाथ मिश्रा द्वारा किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने अपने अधिकारियों को नॉमिनेट किया। इस लंबी यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। ये सेवाएं थोड़े से लोगों और गिने चुने स्थानों से शुरू हुई, लेकिन आश्चर्य यह है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक, चाहे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन हो या बे ऑफ बंगाल स्थित अंडमान निकोबार का ट्राई सर्विसेज कमांड हो, सेवाओं का यह सिलसिला चलता रहा। और अब तो भारत से भी आगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं की भी सेवाएं इस अभियान में जुड़ चुकी हैं। सेवा का वह बीज 25 वर्षों में आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। माउंट आबू में 17 से 21 अप्रैल 2025 की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में स्वयं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन में पधारे और 21 अप्रैल 2025 को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समापन समारोह में उपस्थित हुए। सुरक्षा से जुड़े दोनों ही मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों ने SSW की 25 वर्षों की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना और आगे देश के कोने कोने में हमारे सुरक्षा कर्मियों की सेवा करने की प्रेरणा दी।
25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं।
मेंटल वेलबीइंग का एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया तथा रक्षा मंत्रालय की ECHS के साथ एक MOU हुआ। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन, काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसे उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जहां भारतीय सेना में कमान से लेकर बटालियन तक हर स्तर पर आत्म सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नौसेना के तीनों ही कमांड और सभी प्रमुख इकाइयों में स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय वायुसेना की कई कमांड जैसे सेंट्रल एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड तथा कोस्ट गार्ड के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। वर्ष 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष सेवाएं आरंभ की गईं, जब BSF मुख्यालय ने अपने सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में दो दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का आमंत्रण दिया। इसी प्रकार विभिन्न बलों के मुख्यालयों के निर्देश अनुसार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी में आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसके अतिरिक्त असम राइफल्स, बॉर्डर रोड्स, रेलवे सुरक्षा बल, होम गार्ड और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिफेंस सिविलियंस जैसे कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, नेवल डिफेंस सिविलियंस और डिफेंस वेटरन्स के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए गए। सेवाओं के इस अनोखे सफर में एक समय ऐसा था जब हर दूसरे दिन देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी फोर्स के लिए SSW की फैकल्टीज दृढ़ता और सेवा भाव से लगातार सेवा में व्यस्त थी। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों को निशुल्क किया गया। वर्ष में एक बार माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में सुरक्षा बलों के लिए रेजिडेंशियल कार्यक्रम किया जाता है। प्रेरणाप्रद इन कार्यक्रमों की अमित छाप प्रतिभागी अपने हृदय में संजो कर ले जाते हैं।
In the last 4 days, that is 96 hours, I have transformed. Though I am the same man in physical form,
तो मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ से ये होगा कि प्लीज ट्रीट योर जूनियर्स विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड द वे दे हैव टॉट पीपल, आई फील नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री.
मैं अपनी खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ. टेक इट एज स्पिरिचुअलिटी फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर मेंटल वेलबींग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट.
मैं अपने परिवार के साथ पहली बार इधर आया और मुझे इससे इतना फायदा हुआ कि मैं अपना कार्य और अच्छी तरह से कर सका और ज्यादा कार्य कर सका.
देश के अन्य रिट्रीट केंद्रों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर आदि में भी रेजिडेंशियल कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जाता है. कोरोना काल में भी इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने हेतु विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से SSW ने राष्ट्र की सीमाओं को भी पार किया. सितंबर 2023 में पहली बार दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में हमारे वीर जवानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया. 2021 से भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी में SSW ने स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण नामक विशेष अभियान आरंभ किया. इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से किया.
आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है. इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है.
इसके प्रथम चरण में 6,500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 20 सुरक्षा संगठनों में 168 स्व सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से 20,000 से अधिक अधिकारियों और जवानों को लाभ हुआ. तत्पश्चात 8 चरणों में का कैंपेन द्वारा तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों के सुरक्षा बलों तक सेवाएं पहुंची. 2024 से SSW ने 5 बड़े फोकस्ड सशक्तिकरण अभियानों का आयोजन किया. इंदौर, सिकंदराबाद व हैदराबाद, राजस्थान, भोपाल और ग्वालियर, गांधीनगर, मुंबई. इन अभियानों के अंतर्गत कुल 140 कार्यक्रमों द्वारा लगभग 35,000 सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ. कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल माओ, कमांडेंट CDM सिकंदराबाद, GOCNC साउथ वेस्टर्न कमांड, GOC 21 कोर, SASO साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आदि ने भाग लिया. समय के साथ साथ सुरक्षा बलों में यह जागरूकता बढ़ रही है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है.
योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है मेरे देवियों सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल. और साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग यानी SSW लंबे समय से हमारे जवानों और अधिकारियों को मानसिक रूप से और भी सशक्त बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है. भारत के कोने कोने तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाया है.
भारतीय नौसेना ने मेंटल वेलबींग स्पिरिचुअल वेलबींग कैंपेन भी अभियान चलाया, जिसका समापन जनवरी 2025 को नौसेना मुख्यालय में सिस्टर शिवानी के विशेष कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने लाभ लिया. सशस्त्र बलों में एक प्रसिद्ध कहावत है, द मैन बिहाइंड द मशीन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट. इन सभी बलों की प्रमुख ट्रेनिंग अकेडमीज जैसे कि नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे, इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला केरल और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए. सुरक्षा प्रभाव के सेवाओं में तीव्र प्रगति का एक प्रमुख कारण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सतत विचारों का आदान प्रदान और उनका निरंतर मार्गदर्शन है. इसके लिए SSW टीम नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उनके मुख्यालयों में मुलाकात करती रहती है. साथ ही उनके हमारे परिसर में लगातार आगमन से हमें निरंतर प्रेरणा और दिशा मिलती रहती है.
ये आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है. आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आगे रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते हैं.
सुरक्षा बलों के अद्वितीय साहस, असीम त्याग और अमूल्य बलिदान के लिए प्रत्येक भारतीय हृदय से कृतज्ञ और सदा ऋणी है. मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारे द्वारा उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान, सच्ची श्रद्धा और हार्दिक आभार है. जय हिंद, जय भारत.
इतनी सारी सेवाओं की और इतनी बड़ी सेवाओं का जो विशेष हकदार मैं कहूंगा हमारे बीच में हमारे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन आदरणीय स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अशोक गाबा जी और हमारी शुक्ला दीदी जी जो 25 वर्षों से निरंतर प्रयास करके कि कैसे हम पूरे भारत में सारी फोर्सेस को की सेवा कर सके, उसकी निरंतर प्लानिंग, उसके निरंतर हमको मोटिवेशन देते रहते हैं। और हमने देखा कि वो जो एक बीज लगाया था 25 साल पहले आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। तो मैं समझता हूँ एक बार इन दोनों के लिए हम जोरदार तालियां दें, हमारे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। तो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे ये 25 वर्षों में एक जर्नी थी। जो सबसे बड़ी बात थी कि लास्ट ईयर जब इस 25वां साल था और सिल्वर जुबली का हमारा बिगनिंग था, तो हम लोग के सब में बहुत ये इच्छा थी। हमारे बीच में फोर्सेस के हेड्स आए थे, कई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस आए थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम आए थे, लेकिन कभी होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे। तो बहुत इच्छा थी कि 25वां साल है, सिल्वर जुबली है, 25 साल से पूरे फोर्सेस की सेवाएं कर रहे हैं, तो ये चार दिन के कार्यक्रम में कम से कम होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर कोई तो आए। और हमारा प्रयास दोनों के लिए था, और ये बहुत बड़ा एक वंडर था कि प्रयास तो था कि कम से कम एक आए, लेकिन दोनों आए, एक उद्घाटन में आए और एक क्लोजिंग में आए। और विशेष होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी तो ब्रह्मा कुमारी इस मुख्यालय में पहली बार आए, बहुत वर्षों से उनको इनविटेशन था। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के भी हाईएस्ट फॉर्मेशन में इस बात के ऊपर महत्व दिया जा रहा है कि हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल फिटनेस और बहुत सारी चीजों के ऊपर तो अटेंशन देते ही हैं, साथ साथ मेंटल वेलबींग और मेंटल वेलनेस, मेंटल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर भी हम अटेंशन दें। और हमें बहुत खुशी है कि वो जो लॉन्चिंग हुई बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग हुई, और उसके कारण ये पूरे ही वर्ष में बहुत अच्छी सेवाएं हो रही है। और इसी का एक नतीजा ये था कि हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने पहली बार सिक्योरिटी सर्विसेज विंग और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में MDECHS, जो कि हमारे वेटरन्स के लिए कार्य करता है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, तो उनके साथ एक MOU हुआ जिसमें सारे वेटरन्स जो हमारे वेरियस पॉलीक्लिनिक्स में भारत में उन सेवाएं देते हैं, तो कैसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन से मेडिसिन को कैसे कम कर सके। क्योंकि आप जानते हैं एक बार व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग होता है तो उसको हेल्थ के इश्यूज आते हैं और हेल्थ की रिक्वायरमेंट उसको निरंतर रहती है, तो किस तरह से मेडिसिन उनके हेल्थ के लिए हेल्प करे। तो उस तरह से एक MOU किया और उसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे पॉलीक्लिनिक्स है, पूरे भारत में 400 से अधिक पॉलीक्लिनिक है, और उनके साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे वेटरन्स के लिए। और मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में MDECHS भी है। मैं एक छोटा सा उनका बायोडाटा है वो सुनाता हूँ। मेजर जनरल अनिल चंदेल SM BSM वॉज कमीशनड इन द ईयर 1990। द जनरल ऑफिसर इज एन एलुमनी ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला एंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। द जनरल ऑफिसर हैज सर्व्ड विद हिज बटालियन इन ऑप्स राइनो, ऑप्स रक्षक, ऑप्स पराक्रम एंड ऑप्स मेघदूत। ड्यूरिंग हिज कैरियर स्पेनिंग 36 ईयर्स द जनरल ऑफिसर हैज हेल्ड वेरियस कमांड, स्टाफ एंड इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स। The General Officer was awarded Vashishth Seva Medal during his tenure as Chief of Staff Headquarter UB Area for his distinguished service, and later as Chief of Staff Headquarter 9 Corps. He was conferred with Sena Medal Distinguished. The General Officer assumed the appointment of Managing Director Central Organization ECHS on 16th February 2026. So I will request General Sir to give us words of inspiration for this program, sir.
Honorable Governor of Arunachal Pradesh, लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक जी, राज ब्रह्मा कुमारी, सुदेश दीदी जी, स्क्वाड्रन लीडर भाई ब्रह्मा कुमारी भाई, स्क्वाड्रन लीडर अशोक गावा जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी, IG कोस्ट गार्ड TS कुमार जी, और सभा में उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारी दीदी भाई और सभी सिक्योरिटी सर्विसेज के उपस्थित यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स, ऑफिसर्स, JSOs और जवान, जय हिंद और ओम शांति। सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का अवसर प्रदान किया। वैसे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ECHS संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी बताया गया, और एक साल हो गया हमारे को, और इसमें हमने काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे पहली बारी एसोसिएशन में आना हुआ है। और जब मैंने आज पूरे प्रांगण का दौरा भी किया और बाद में राजोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी से मिलने का मौका भी मिला, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कैसे ये संस्था जो है अगर इसको फॉलो किया जाए तो कैसे पीस ऑफ माइंड आ सकता है और कैसे ये हमारे सर्विंग सोल्जर्स और हमारे वेटरन्स को खासकर उनकी मेंटल हेल्थ और उनको एक कामनेस देने में हमारी मदद कर सकता है। एक सैनिक का जीवन सामान्य नहीं होता, उनके जीवन में बहुत चैलेंजेस होती हैं। वो अपने परिवार को पीछे छोड़ के यूनिफॉर्म पहन के जहां उनको ड्यूटी का नियुक्ति होती है वहां जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। जमाना बदल रहा है, ऐसे युद्ध करने का तरीका भी बदल रहा है। हमने ऑप्शन दूर में देखा कैसे ड्रोन कहीं से भी आ जाता है। उसका यह नहीं है कि पहले हमारे को होता था कि दुश्मन सामने है तो सामने से दुश्मन वार करेगा, अभी दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। अगर हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में लगे हुए हैं तो दुश्मन देखने में हमारा दोस्त भी लग सकता है। तो इस सब करके जो हमारे चैलेंजेस हैं बढ़ रही हैं और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और ये कॉन्स्टेंट अलर्टनेस हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज करती है उससे हमारे को मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था हमारे साथ जुड़ी और जैसे कि हमने अभी वीडियो में भी देखा कैसे एक साल में या पिछले 10-25 साल में कैसे खासकर लास्ट 2 ईयर्स आई वुड से कैसे हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं इस मामले में कि हमारे सारे एसोसिएशन बढ़ते रहें और हमारे सर्विंग और वेटरन्स सोल्जर्स को एक मेंटल पीस और स्पिरिचुअल क्वेश्चंट उनका बढ़े। ECHS में हमारा मेन जो है मकसद वो एक्स सर्विसमैन को उनकी हेल्थ के साथ। ये स्कीम हमारी जब 2003 में शुरू हुई तो हमारे 3 लाख बेनिफिशियरी थे, आज ये बढ़ के हमारे 65 लाख बेनिफिशियरी हो गए, जिसमें से कि तकरीबन 20 लाख प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं और 65 लाख टोटल बेनिफिशरीज हैं। हमने ये देखा है कि जैसे सर्विंग के दौरान सर्विस के दौरान मेंटल टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, वैसे ही जब एक सोल्जर यूनिफॉर्म छोड़ के अपने आप को रीअटायर करता है और वापस सिविल सोसाइटी में आता है तो उसकी भी चैलेंजेस कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं, क्योंकि जब तक वो फौज में था या थी तब तक उनको बहुत एक वैसे तो टेंशन अलग होती है, स्ट्रेस अलग होता है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत सिक्योर होता है। हमारे कैंटोनमेंट्स, हमारी छावनियां, वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उनको ये यकीन होता है कि जब मैं बॉर्डर पे हूं तो पीछे मेरी परिवार जो है वो सुरक्षित है। लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं सिविल सोसाइटी में तो जिन दोस्तों को वो 20 साल 25 साल पहले छोड़ के गए थे वो अभी कुछ और ही बन गए होते हैं, तो उनसे वापस आके उनसे तालमेल हासिल करना, उनके साथ वापस मिलना, बच्चे बड़े हुए होते हैं, बच्चों को उनकी सेटल करना, उनकी शादी कराना, कोई कहीं घर बनाना, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल करना, तो काफी स्ट्रेस उनको भी उतना ही बढ़ता है। ये नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद में स्ट्रेस कम हो जाता है और ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं हेल्थ इश्यूज में। तो इसलिए जब ब्रह्मा कुमारी संस्था हमारे साथ जुड़ी और हमारे पॉलीक्लिनिक्स में हमने पिछले गत वर्ष तकरीबन 100 पॉलीक्लिनिक सेशन से ज्यादा हमने करे हैं, जिससे तकरीबन 5,000 से भी ज्यादा वेटरन्स को इसका बेनिफिट हुआ है और कई वेटरन्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी हमारे को बताया कि हमारे को इसको और रेगुलर तरीके से करना चाहिए, एक नियमित ढंग से, ताकि हमें पता चल सके कि अगला सेशन कब होना है, और वो संस्था के साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत रुझान है, लेकिन हम उसको पूरा अभी हम बात कर रहे थे शाम को उसको कैसे हमें इसको एक फॉर्मलाइज और करना है उसके प्रति अभी हम अगले साल करेंगे। और मेरे को पूरा यकीन है कि अगले साल ये 5,000 से भी फिगर बढ़ के 3-4 times और ज्यादा आ जाएगी। आप सब जो यहां उपस्थित हैं मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहां पर आए हैं, आपको मौका मिला है, आपको स्पेयर किया गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, इसका भरपूर फायदा उठाइए। और एक ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट की तरह आप जो यहां पर सीख रहे हैं ये वापस जाके अपने अपने यूनिट में, अपने अपने बटालियन में इसके बारे में प्रचार कीजिए ताकि वो और लोग इसके साथ जुड़ सकें और जो आपने यहां सीखा है वो आप उसका मुनाफा और लोगों को भी दे सके। ज्यादा ना कहते हुए आप सबसे मेरा यही गुजारिश है और हमारी प्रार्थना संस्था के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी और हम चाहेंगे कि हम अपने एसोसिएशन को और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, ओम शांति।
थैंक यू सर। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, आप सब समझते हो अपने आप को भाग्यशाली हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि नॉर्मली सर्विसेज में या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़े होते हैं बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, ये एक बहुत यूनिक कोर्स है, एक बहुत स्पेशल कोर्स है। क्योंकि तीन चार दिन, ऐसे तो पूरे वर्ष फील्ड फॉर्मेशंस में प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन वहां जब हमारी टीम जाती है तो आप अपने काम में बिजी होते हो, वहां से थोड़ा सा एक घंटा निकाला, आधा माइंड आपका वैसे ही वहां रहता है, तो मैं समझता हूँ उतना बेनिफिट नहीं ले सकते। यहाँ आप तीन चार दिन आए हो तो आपको एक ही काम है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सबसे अच्छी अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो सबसे अच्छी फैकल्टी, बहुत पॉपुलर सिस्टर शिवानी भी इस प्रोग्राम के लिए विशेष आ रही है। वो जनरली हमारे इस माउंट आबू प्रोग्राम के लिए नहीं आती क्योंकि बहुत सारी विंग्स में इन्वॉल्व होती है, बट वो फिर भी विशेष इस प्रोग्राम के लिए आ रही है। सिल्वर जुबली में हमने रिक्वेस्ट किया था तो लास्ट ईयर और इस ईयर आ रही है, तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। और मैं, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इस प्रोग्राम का पूरा पूरा फायदा उठाओ, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप अपने जीवन में धारण कर सकते हो। और जैसे सर ने कहा, ये ECHS का MOU लास्ट ईयर हुआ था, तो उससे पहले हम लोग बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे, बट जैसे उन्होंने नंबर्स बताए, आज ECHS के साथ जितने लोग जुड़े हैं उतने शायद हमारे एक्टिव सर्विस में बहुत गुना ज्यादा है, तो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। और उस एज में कई ऐसी चीजों की बहुत आवश्यकता भी है जहां मानसिक रूप से उन्हें सशक्त होना चाहिए। तो जैसे सर का बहुत इंटरेस्ट है, हम उनके ऑफिस में भी मिले थे, उनका ये था कि हम कैसे इसको और बढ़ाएं और कैसे मैक्सिमम लोग इसको बेनिफिट करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, हम इस दिशा में पूरा कार्य करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। हमारे बीच में वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव, ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी इसको सब समझते हैं कि ये एक बहनों की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सही बात भी है कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो बहनों की है, लेकिन बहनें लीडरशिप में हैं लेकिन वो भाइयों के साथ मिलकर करती है काम। तो हमारे बीच में भाइयों में जो सबसे वरिष्ठ भाई है, तो आज हमारे बीच में बीके करुणा भाई जी है। आपके बहुत सारे असाइनमेंट है, बहुत सारे उनके पोर्टफोलियोज है, मैं चार पांच मुख्य पोर्टफोलियोज बताऊंगा। आप सेक्रेटरी जनरल ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है माउंट आबू, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड चीफ ऑफ मल्टीमीडिया फॉर द ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी ऑफ राज्यों का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, चेयरपर्सन ऑफ मीडिया विंग, फाउंडर एंड हेड ऑफ पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल, कईयों ने आपने पीस ऑफ माइंड चैनल देखा होगा, सेक्रेटरी ऑफ रेडियो मधुबन कम्युनिटी सर्विसेज, यहाँ रेडियो मधुबन बहुत फेमस है इस एरिया में, डायरेक्टर ऑफ रेडियो मधुबन 90.4 FM सिंस 2011, इंडिया कोऑर्डिनेटर फॉर बीके ग्लोबल IT वीडियो एंड पब्लिक रिलेशनशिप। और इनको, सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मैं बस एक अवार्ड की बात करूंगा, ये जून 2003 का अवार्ड है और ये अवार्ड मिला था एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डिस्कवर द स्पिरिट विद इन, प्रोड्यूस बाय हिम, वाज ऑनर्ड विद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बाय रापा। ये एक बहुत ही छोटी सी एनिमेटेड वीडियो है जिसमें स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को बड़े सिंपल रूप से बताया, और हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जब भी प्रोग्राम करते थे और बीच में 15-20 मिनट मिलता था तो हम ये वीडियो जरूर दिखाते थे, ये स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को बड़े सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करने का। तो मैं सर का बहुत थैंक्स करते हैं, सर मिलिट्री में बहुत हमने ये वीडियो को यूज किया। आदरणीय करुणा भाई जी।
सत्यम शिवम सुंदरम, ओम नमः शिवाय। ऑनरेबल गवर्नर साहब, मेरे साथ स्टेज में उपस्थित सभी वक्तागण, देश को रक्षा करने की सेवा में डेडिकेटेड आप सभी भाई बहनों को ओम शांति। 1960 में पहली बार जैसे आप यहां हैं ऐसे मैं आया था, तो मुझे यहां प्राप्त जो ज्ञान है, मैं इंजीनियरिंग में भी सीखा है नहीं और आज की मीडिया भी मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, वहां भी कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जो मैंने यहाँ प्राप्त किया है। आप भी इन तीन दिन के अंदर पांच बातें आप लोग यहाँ सीखेंगे। पहली बात तो मुझे अत्यंत हर्ष है, जो हम लोग सोचते थे कि भाई हम तो एक दिन तो जन्म लिया है तो शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे ऐसा, पर मुझे यहाँ बताया गया जो हम सभी कोई भी मरने वाले नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ ऐसा कैसा हो सकता है। हर जितने भी मुझे याद है, मैं छोटा सा था, महात्मा गांधी जी ने शरीर छोड़ा तो हम रोते रहे, तो क्योंकि हमको यही है कि भाई हम भी एक दिन शरीर छोड़ेंगे। पर जब मुझे पूछा उन्होंने, हमारे दीदियों ने, कि भाई आप कौन है, तो यूजुअली यही परिचय देते हैं ना कि भाई हम इस ऑफिस में है, ये पदवी है, ये अपना परिचय देते हैं या विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। तो इन्होंने कहा ये आप नहीं है। अरे जिंदगी भर हमने इसको प्राप्त करने के लिए जो भी हम अचीव किए हैं, जो सारी दुनिया को हम यही तो कहते आए हैं, तो दीदी ने कहा ये आप नहीं हो। तो मैंने कहा फिर मैं कौन हूं, तो इन्होंने कहा तो आपने देखा है जो शरीर छोड़ते हैं एक दीवा जलाते हैं, भारत में ये संस्कृति है। तो ये हमको सिखाया जाता है कि आप शरीर नहीं है, जो देखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले जो है वो एक चेतन है, ज्योति है, जिसको हम जीवात्मा या आत्मा कहते हैं। तो मेरा परिचय, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, तो एक पार्ट बजा रहे हैं इस मंच में। दूसरी बात, आपको कितने पिता है, तो मैंने कहा पिता तो एक ही होता है, और इन्होंने कहा शरीर का तो आप जानते हो, पर जब आप आत्मा है तो इनका भी कोई पिता है। हाँ, मैंने कहा हाँ है, त्वमेव माताश्च पिता, आत्मा का भी पिता है, परम पिता, परम आत्मा कहते हैं। तो उन्होंने बताया जो भी ज्योति है, जिसका भारत में, विश्व में ज्योतिर्लिंग के रूप में भारत के नीचे से ऊपर तक शिवलिंग का पूजा आज भी हो रही है। तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वो ज्ञान मुझे यहां से प्राप्त हुई। तीसरी बात, हम लोग बहुत आनंद में यहां है इस दुनिया में, पर ये दुनिया क्या है। तो कहते हैं पांच तत्वों से आया है यह शरीर, जिसमें पांच तत्व है। कोरोना के टाइम पर हम सब जानते हैं कि हवा भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, तो ये पांच तत्व की जो ये सृष्टि है, ये भी ईश्वर का हम सबके लिए वरदान है। तो जिस कारण हम आज बहुत खुश है, और जो ये शरीर ईश्वर ने हमको दिया तो उससे भी हम संतुष्ट है। हर एक को अपनी फेस अच्छा लगता है, और हम जितनी बार इसको आईने में देखते हैं कि अच्छा लगता है, पर ये क्रेडिट ईश्वर को जाता है। चौथा, आखिर करना क्या हमको, हरेक हम लोग अभी देश के लिए आध्यात्मिक रूप से हमारा जीवन अर्पित किए हैं, आप देश सेवा के लिए अपना पूरी लाइफ जैसे डेडिकेट किए हैं, तो आखिर करना हमको अपनी ड्यूटी तो है ही, परंतु हम लोगों को शांति और सुख अनुभव करना है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। कोई भी साहूकार के या पॉलिटिकल लोगों का बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो इसीलिए हम सबको एक दो को देना है। जैसे नमस्ते करते हैं, ओम शांति करते हैं, जय हिंद कहते हैं, तो खुशी से कहे, तो ताकि इन लोगों को भी मालूम हो कि आप भी माउंट आबू आए थे, ब्रह्मा कुमारी में आए थे, तो क्या लेके आए, तो आपका मुख से ही, चेहरा और चलन से ही लोगों को मालूम होगा कि हमको मालूम है हम किसके बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा का बच्चे हैं। तो खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, शांत रहना, शांति अन्य आत्माओं को भी देना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हम सभी एक ईश्वर के बच्चे हैं। तो लास्ट में हम क्या सीखते हैं यहां, तो हम सब कुछ करना चाहते हैं पर मिलेंगे कहां, एक ईश्वर से। तो ईश्वर से मिलने का भी एक बहुत अच्छा टाइम है। शरीर के तो जानते हैं, इतना बजे से इतना बजे तक ऑफिस है, ये सब कुछ, पर ईश्वर से भी मिलने का एक स्पेशल टाइम है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमको सिखाया है। तो मैं भी 1960 से अभी तक भी एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया है, वो है सुबह 4 से 5 बजे। सारी दुनिया सोए हुए है पर हम बच्चे जाग रहे हैं, तो ईश्वर का। तो 5 के बाद आप जानते हैं, हमारे देश में ही सब भगत, ईश्वर के विश्वास वाले ईश्वर को याद करते हैं, परंतु हम बच्चों के लिए यहां ये सिखाया गया है जिसको राजयोग कहते हैं। तो आपको जैसे मालूम हो जाएगा कि बस उस समय पर ईश्वर से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो आप भी उस सुख शांति आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
थैंक यू करुणा भाई जी, आपने बहुत सारी अध्यात्म की बातों को भी बड़े सिंपल रूप में हम सबके सामने रखा, और आपसे भी बहुत प्रेरणाएं मिलती रहती है इतनी एज के बाद भी। आज सवेरे हम आज ही उनको हमने बोला कि सर आपको ऊपर आना है, तो तुरंत वो मान गए, उनके कुछ और कमिटमेंट्स थे, फिर भी सर वी आर वेरी ग्रेटफुल कि भाई साहब आप हमारे बीच में आए। किसी भी शुभ कार्य को दीप प्रज्वलन से शुरू करते हैं, ये भारत में एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर हमारे सारे मेहमान, ऑल डिग्नेटरीज, टू प्लीज ज्वाइन अस इन दिस कैंडल लाइटिंग। हमारे गवर्नर सर के साथ जो टीम में आए हैं, मैडम आप भी आ जाइए, श्रीमती परनायक, और हमारे कमिश्नर टू गवर्नर श्री पवन कुमार सेन सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कैंडल लाइटिंग में ज्वाइन करें।
अनुरोध करता हूँ SDG वीरेंद्र सर वेस्ट बंगाल, कृपया आप भी मंच पर आए। ब्रिगेडियर अशोक सर आप भी स्टेज पे आए सर।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
Next, for the inaugural address, as I said, we are very honored to have the Honorable Governor of Arunachal Pradesh. Sir is a veteran of the Indian Army. He has commanded the most prestigious command of the Indian Army, the Northern Command. The Security Services Wing has conducted a lot of programs. And long back when he was the GOCNC of the Northern Command, a program was conducted at his place. Even he attended that program. There are so many dates, so many programs, nobody remembers. But this one date we remember because the date was 11-11-11. So that was the day when this program was conducted. The GOC himself attended the entire program. And Ashok Gawaji and his team had gone for the program. One of the sisters, I think Kamala Didi, she's also coming as a faculty. So, sir, we are very honored. And since then, since he had personally attended, we were always very hopeful that one day he will come for this program. And it is a big honor that as a governor, he is amongst us. A small biodata about the governor. Lieutenant General K.T. Parnayak, PBSM, UISM, YSM retired, is presently the 20th governor of Arunachal Pradesh. He was the first from Maharashtra, from his state, to command the prestigious Northern Command. His military career, he was an alumni of Sainik School Rewa and National Defense Academy. He was commissioned into the 2 Rajputana Rifles on March 31, 1972. Later, he commanded the same unit. He led the 104 Infantry Brigade in Kupwara during Operation Parakram, the 17th Mountain Division in Sikkim, Imtrat in Bhutan, and 4 Corps in Tejpur. From 2011 to 2013, he was the GOCNC Northern Command and retired on June 30, 2013. As the governor's role, he was appointed on February 12, 2023, and he assumed the office of on February 16, 2023. I will request the Honorable Governor, sir, to give his inaugural address.
Pranam, Om Shanti. It's a great honor for me to be here today to join the wonderful organization of which I have been associated in different forms before. And I have the personal pleasure now to be present here for this event in the august presence of all the prestigious Brahma Kumari in this wonderful Brahma Kumari Vishwa University, which has for years served the country in improving the mental health and the moral standards of the society. मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पर आ पाया और आप सबसे जुड़ा. मुझे याद है जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था तो एकेडमी का दिन एक छोटी प्रेयर के साथ शुरू होता था और उस आराधना या प्रेयर के पहले तीन वाक्य थे, ओ गॉड हेल्प मी टू कीप माई सेल्फ फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली अवेक एंड मॉरली स्ट्रेट. मेरे ख्याल से ये एक आदर्श था जो हमने एनडीए में सीखा और अपनी पूरी सर्विस में इसको अमल करने के लिए, इसको निभाने के लिए हमने पूरी कोशिश की. भारतीय सशस्त्र सेनाएं, अर्धसैनिक बल, स्टेट पुलिस, सभी सिक्योरिटी औहदे जो यहां पर नुमाइंदे उनके आज उपस्थित है, मैं उन सबको नमन करता हूं क्योंकि आप और हम मिलकर इतने सालों से, जब से भारत आजाद हुआ है तब से हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो बाहरी चुनौतियों हो या आंतरिक चुनौतियां हैं. मेरे ख्याल से आजादी के बाद में और किसी मुल्क ने इतनी सारी लड़ाइयां, इतने सारे काउंटर इंसर्जेंसीज और इतनी सारी सिविल डिसोबीडियंसेस का सामना नहीं किया होगा. भारतीय सैनिक जिस परिस्थिति के अंदर अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हो, माउंटेन्स हो, रिवराइन टेरेन हो, जंगल हो, हाई एल्टीट्यूड हो या ग्लेशियर हो, और किसी देश में कोई सैनिक इतनी विभिन्न इलाकों के अंदर अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमें गर्व है इस बात का कि हमने अपने देश यानी नेशन बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है. आप सब ने दिया है, आपके साथियों ने दिया है, और इतने साल की सर्विस के बाद, इतनी चुनौतियों से उलझने के बाद, मैं ये मानता हूं कि जिस किस्म का स्ट्रेस या जिस किस्म की परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, जिस किस्म की चुनौतियां आपने झेली, आपने अपने साथियों को गवाया, लेकिन देश के लिए काम किया. और आज हमारा देश, पूरी सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, सबके इस कार्य के लिए नतमस्तक है और उन्हें गर्व है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं आज देश को सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं. अब ये जरूरी है कि जब इतनी बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं तो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और स्पिरिचुअल तौर पे जो है हमारे ऊपर काफी प्रेशर रहे हैं पूरा टाइम और आगे भी रहेंगे. हमारे चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन्हें हमसे कुछ न कुछ गिला शिकवा हमेशा रहता है और हमारी सीमाएं हमेशा जो है वो एक्टिव रही हैं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है विकसित भारत 2047, इसको पूरा करने का एक बहुत बड़ा दारोमदार सशस्त्र सेनाओं पर है. जब तक सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, जब तक आंतरिक सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे और जब तक हम लोगों में आपसी भेदभाव को मिटाएंगे और एक सेक्युलरिज्म का एक अच्छा नमूना पेश करेंगे, तब जाके ये देश विकसित बनेगा. तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सब पर और हमारे साथियों पर, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सिखलाई दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, हमें अलग अलग किस्म की सिखलाई दी जाती है जो हमें शारीरिक और मानसिक तौर के ऊपर सक्षम बनाती है। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल, ये जो दायरा है स्पिरिचुअल का, जो मानसिक दायरा है, वो भी एक बहुत जरूरी दायरा है जिसके ऊपर काबू करना अति आवश्यक है। तो मैं अपने तहे दिल से प्रशंसा करूंगा कि ब्रह्म कुमारी संस्था ने जो पहल की है खास करके सैनिकों के लिए, वो बहुत ही कारगर है और आप में आत्मविश्वास जगाने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। स्पिरिचुअली अगर आप कहें तो हम अगर आंख बंद करके अपने आप से बातचीत करें तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कई चुनौतियों का सामना करना है, कई मुश्किलात आएंगी, तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। तो जो आत्मविश्वास है, जो आपका अंदरूनी अहम है, उसको शांत हम कैसे कर सकते हैं और उसको शांत करके क्या हम कारगर बन सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा अभियान है जो ब्रह्म कुमारी आश्रम और संस्था जो है चला रही है। इनके प्रोग्राम्स जो मैंने सेना में रहते हुए अटेंड किए, अभी अरुणाचल में रहते हुए भी अटेंड कर रहा हूं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का ज्ञान ये हमें बांट रहे हैं, जिस तरह की शांति हमारे मन में जगा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए ही नहीं, ये जग भर में इनकी संस्था जो है अलग अलग देशों में इन्हीं चीजों का जो है प्रचार कर रही है। तो मैं मानता हूं कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो है देश को एक मानसिक बल प्रदान कर रही है जिससे हम अपने आप में आत्मविश्वास जगा सकें, अपने कार्य को और अच्छा कर सकें और निष्ठा के साथ देश सेवा कर सके। यहां आने के बाद जो यहां का वातावरण है, जो यहां की सिखलाई है, जो चिंतन है, जो अपने आप को जानने के लिए प्रयास है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और ये आपको और मुझे यहां आने के बाद में अपने आप ही इसका ज्ञात होता है। वातावरण ही ऐसा है, आप दो मिनट के लिए शांत बैठते हैं, आपका जो डर है, आपकी जो चिंताएं हैं, उनसे मुक्ति पाते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूं, चाहे कोई भी मुश्किलात आ जाए। आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत इसका फायदा होता है। अगर आप झुंझलाट में फैसला लेंगे तो फैसला गलत भी हो सकता है, लेकिन शांत मन से सोच विचार के बाद जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए, देश के लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो जरूरी है कि सेनाओं को चिंतन करना सिखाना भी आना चाहिए। हालांकि कई वर्षों से सेना के अंदर, चाहे वो सशस्त्र सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस दल हो, हमने योगा का चलन किया है और हर महीने या बीच बीच में हम योगा की सिखलाई सबको देते हैं और कई लोग ऐसे हैं हमें जो खुद ब खुद योगा जो है अपने मन मर्जी से करते हैं। तो वो भी एक तरीका है अपने अंतर मन को अपने दिमाग के साथ जोड़ने का। और ये जो सिखलाई है ये आपको सक्षम बनाती है, ये हमको अपना कार्य करने में जो है मदद करती है। और इसलिए जरूरी है कि इतनी झुंझलाहट में, इतनी दौड़ भाग में, इतनी चुनौतियों में अगर हम थोड़ा वक्त निकाल के अपने को शांत करें, अपने दिमाग को शांत करें, अपने में आत्मविश्वास जगाएं, तो आप अपना काम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे यहां पर बड़ी भाई है कि जो व्यवहार है, व्यवहार आपने अपने में एक अच्छा व्यवहार जागृत करना है। एक अच्छा नागरिक वो बनता है जो शिक्षित हो, अनुशासित हो और प्रेरित हो। ये तीन गुण हमें अपने युवाओं में पैदा करने बहुत जरूरी है, और ये सिखलाई जब भी मैं अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल में जाता हूँ तो उनको ये समझाता हूँ कि आप बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं, सिर्फ किताबों से ज्ञान बांटना काफ़ी नहीं है, उनका आपने मॉडलिंग करना है, और ये ध्यान में रखते हुए कि वो शिक्षित बने ताकि शिक्षा का उपयोग किताबों के बाहर हो सके। शिक्षा आपको ज्ञान देती है और आपको कॉन्फिडेंस देती है, और अगर आप अनुशासित हैं, और ये अनुशासन वो नहीं जो हुक्मों के ऊपर पाया जाता है, सावधान, विश्राम, दाहिने चल, बाएं चल, ये अनुशासन है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने नियम तय करें, अच्छी आदतें डालें और उन अच्छे आदतों के ऊपर अमल करें, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो आपको देख के आपके साथी भी इन चीजों को सीखेंगे। और प्रेरणा अति आवश्यक है, अगर व्यक्ति प्रेरित ना हो तो वो कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो अगर सिखलाई में ये तीन चीजों को हम ध्यान में रखें तो मैं समझता हूं कि हम एक अच्छा सैनिक, अच्छा वॉरियर, एक सेलर एयरमैन, एक अच्छा कमांडो, एक अच्छा अर्धसैनिक बल का लीडर, ये सब बन सकते हैं और बन भी रहे हैं। जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे माननीय गृहमंत्री ने एक वादा किया था कि हम ये जो माओइस्ट कल्चर है ये 31 मार्च तक इसको खत्म कर देंगे। तो जो भी निर्णय उन्होंने लिया, जिस तरह से सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की तैयारी हुई इससे निपटने के लिए, लेकिन सिर्फ ये शस्त्र से या डर से नहीं गया। आजकल एक नया टर्म इस्तेमाल हम करते हैं, होल ऑफ द नेशन एफर्ट। ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया तो वो एक अनोखा ऑपरेशन था जो कि न्यू नॉर्मल की तरह जो है पेश हुआ। हमने कहा कि हम अगर आप आतंकवाद बंद नहीं करेंगे तो हम आतंकवादी संस्थाओं के ऊपर वार करेंगे, उनको ध्वस्त करेंगे, और अगर आपने इसके पीछे कोई कदम उठाया तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और यही हुआ। एक साथ कई आतंकवादी अड्डे जो है नष्ट किए गए। पाकिस्तान ने हड़बड़ाहट के साथ ड्रोन से, हवाई जहाजों से, बम और मिसाइल से वार करने की कोशिश की जो नाकाम कर दी गई। तो लड़ाई के वक्त एक टर्म आता है, एस्केलेशन कंट्रोल। आप लड़ाई शुरू कर सकते हैं, क्या आप बंद कर सकते हैं? उसका एक जागता हुआ नमूना पश्चिम एशिया में अमेरिका इजराइल के साथ, ईरान के साथ हो रही लड़ाई के अंदर आप देख रहे हैं। लड़ाई शुरू तो कर दी है लेकिन बंद करने के लिए मुश्किलात पेश आ रही है। हमने ये करके दिखाया और आज पूरी दुनिया इस बात को लोहा मानती है हमारा कि ये जिस तरह से भारत ने अपने प्रॉब्लम को सुलझाया, जिस तरह से वार किया, जिस तरह से संयम रखा और जिस तरह से बोल के बता के एक्शन लिया और उसको खत्म भी किया, ये पिछले दो सेंचुरीज में हुई लड़ाइयों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो वक्त बदल रहा है, लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं, नया तरीका है जिसमें टेक्नोलॉजी ही सिर्फ नहीं, जहां पर अस्त्र शस्त्र ज्यादा कारगर हो रहे हैं, लंबी रेंज है, ज्यादा मार करते हैं, और टारगेट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी वातावरण के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। दूसरा नया जो तरीका अपनाया जा रहा है आजकल दुनिया में है, वो है कॉग्निटिव वॉरफेयर या ग्रे वॉरफेयर कहते हैं। उसका मतलब है बगैर बम मिसाइल फायर किए हुए, बगैर किसी का नुकसान किए हुए, आप कुछ ऐसा करें कि जो दुश्मन देश है वो नाकामयाब हो जाए, जिसमें साइबर, इंफॉर्मेशन वॉर, स्पेस इत्यादि शामिल है। तो ये सब काबिलियत जो है इसको भी हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये सब करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, आपको सोच चाहिए, और सोच ऐसी कि आप हर चुनौती का तोड़ पहले से ही जान लें। और ये तब हो सकता है जब मानसिक तौर से हम प्रबल हों, और यही उद्देश्य जो है ये ब्रह्म कुमारी संस्था का है। और बड़ी निष्ठा के साथ इतने सालों से इसके ऊपर अमल है। हम ये भी देखते हैं कि आमतौर पे घरों में अस्थिरता रहती है, मोहल्लों में आस पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, धर्म के ऊपर बहुत सारा फसाद होता है। तो इसको दूर करने के लिए भी जो सिखलाई आप दे रहे हैं कि परमात्मा तो सिर्फ एक है, नाम अलग है, परमात्मा एक ही है जिसको आप मानते हैं, लेकिन नाम अलग है, आपके तरीके अलग है, खान पान अलग है, इसलिए आप अपने को दूसरे से अलग मानते हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करके सोचे तो परमात्मा एक ही है, और यही सीख वो दे रहे हैं हमको सबको कि उसमें भरोसा रखो, परमात्मा आपके अंदर है, उसको जगाओ, और अगर उसको आपने जगाया तो आपकी सोच सुधरेगी, आप सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, आप सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, साथ ही साथ अपने को काबिल भी बनाएंगे। अगर मुसीबत आती है तो उससे उलझने के और उसका सामना करने की काबिलियत आप में आएगी। और मुझे बहुत ही खुशी है कि इन्होंने इतने सालों में अपना जो स्कोप है वो बढ़ाया है, तकरीबन हर सैनिक दल के अंदर जाके, उनके पास जाके उनको ये सिखाया, उनसे ये काम करवाया, और उनको ये एहसास दिलाया कि अगर आप मानसिक तौर से प्रबल होना चाहते हैं तो इस किस्म से आप अपने आप को मानसिक तौर के ऊपर स्वस्थ रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि, और ये मैंने अरुणाचल में स्कूल कॉलेजेस में और बाकी संस्था के अंदर भी इस बात को कहा है कि मानसिक तौर से स्वस्थ रहने के लिए जो भी काम हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और आज मैं अरुणाचल की ही दो बातें कहूंगा। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल, लेकिन 100% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। आपसे मिलते हैं तो जय हिंद के नारे के साथ मिलते हैं, तो जो उनमें आत्मीयता है, जो देश प्रेम है, जो देश के प्रति भावना है, वो बहुत प्रबल है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो उत्तर में चीन है, पूरब में म्यांमार है, और दक्षिण में बांग्लादेश है। इन सभी मुल्कों से कुछ न कुछ खतरा हमेशा मंडराता रहता है, तो उसका सामना करने के लिए वो हमेशा सेना अर्धसैनिक बल के साथ खड़े हैं और सीखना चाहते हैं। 100 जनजातियां हैं, 26 जनजातियां हैं और 100 उप जनजातियां हैं, हर एक की भाषा अलग है, लेकिन भाषा एक बोलते हैं, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नमूना है। 70 साल तक वहां कोई प्रगति नहीं हुई थी, क्योंकि दूर दराज का इलाका था, रास्ते नहीं थे, इलाका मुश्किल था, तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन पिछले दशक और कुछ साल ज्यादा से जो प्रगति वहां हुई है वो 5-7 साल के अंदर 4,000 किलोमीटर के रास्ते बने हैं, फ्रंटियर हाईवे बन रहा है जिससे कि वादियों को कनेक्ट किया जा सके। वो सेना के लिए भी जो है सुविधा है और वहां के लोगों के लिए भी। जहां कुछ भी सहूलियत नहीं थी आज वहां आखिरी गांव तक क्लास 70 रोड है, हर घर में उनके नलों में पानी है, हर गांव में बिजली है और पूरे राज्य में 4G है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है इतने सालों में, जो कभी वहां नहीं थी। और आगे चल के अरुणाचल जो है राष्ट्र के प्रति इकोनॉमी में जो है सहयोग देगा। जो हाइड्रो पावर है उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है और जितना बिजली का उत्पादन वहां होता है 80% बाहर जाता है, उसकी जो कमाई होती है वो देश को जो है उसकी इकोनॉमी में मदद करती है। वैसे और भी प्रोजेक्ट्स वहां पर हमने लिए हैं जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस वातावरण में अगर हम शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, जो भी आप कहें, इन चीजों के ऊपर ध्यान दें तो देश की प्रगति होगी और हम जो हमें दूरदृष्टि माननीय प्रधानमंत्री ने दी है विकसित भारत की, उसकी ओर हम बढ़ पाएंगे और उसको हासिल कर पाएंगे। मैं ये भी कहता हूं कि ये दूरदृष्टि माननीय प्रधानमंत्री ने दी है, लेकिन जैसे जैसे 2047 का वक्त नजदीक आएगा, नए लीडर होंगे, आज के युवा जो स्कूल कॉलेजों में हैं उनके ऊपर उत्तरदायित्व होगा देश को विकसित बनाने का, तो हमें उनको विकसित बनाने के लिए तैयार करना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा सैनिक बनाना है, एक अच्छा व्यक्ति बनाना है जो आगे चल के लीडरशिप के रोल में वो सब कर सके जिससे भारत जो है विकसित होगा। आखिर में मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि शिक्षित, अनुशासित, प्रेरित, जो ये तीनों बहुत जरूरी चीजें हैं और उसमें हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था का जो है एक बहुत बड़ा हाथ है। मानसिक तौर पे अगर हम स्वस्थ हों तो हम बाकी इलाकों में भी है स्वस्थ होंगे। आप अच्छे वॉरियर हैं, अच्छे सैनिक हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे कमजोर हैं तो आपके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो संतोष बहुत बड़ी चीज है और प्रेरणा के लिए भी हम स्कूल के बच्चों को भी और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोगों को, आम नागरिकों को प्रेरित करते रहते हैं कि आप जागिए, आप काबिल बनिए और आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए अच्छा काम कीजिए। मैं यहाँ पर सभी माननीय ब्रह्म कुमारी दीदी भाई बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे बड़ा अभिमान है कि जिस पथ पे वो चल रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, वो आगे चल के भारत का जो पुराना नाम था विश्व गुरु का, उसे हासिल करने में हमें मदद करेंगे। तो एक बार फिर से और मैं ये भी प्रण करता हूँ कि मैं काफी सालों बाद यहाँ आया, लेकिन मुझे आना चाहिए था, तो आगे मैं जरूर प्रयास करूंगा यहाँ पर और आने का और वक्त बिताने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनॉग्रल एड्रेस। हम सब जब आपकी बातें सुन रहे थे तो ये तो बहुत स्पष्ट था कि आपके विचार भी बहुत क्लियर थे, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत उमंग उत्साह वाले थे। और आपने बहुत समय आर्मी में रहे और हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपके साथ सर्व किया है। एक दो बोल रहे थे आपने उनको कमांड किया था, एक दो आपके साथी भी थे, तो सबका आपके प्रति एक बहुत ही हाई इमेज था, बहुत ही ऊंचा इमेज। और दूसरा, आज वर्तमान में आप अरुणाचल के गवर्नर हैं, तो हर समय उनको ये रहता है कि अभी अरुणाचल का कैसे हम और अच्छा करें, कैसे उसको प्रोग्रेस करें। जब हमारा सौभाग्य था, हम जब नॉर्थ ईस्ट की जो सेवाओं में गए थे और उनसे मिले, तो बहुत एक घंटा हमने जब चर्चा की तो हमने देखा कि सर का बहुत पैशन था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश अभी आगे बढ़े। के तो ये भी सर स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द आर्ट ऑफ गिविंग, क्योंकि जहां हो आप नेचुरली देते हो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि सर आप भी एक स्पिरिचुअल सोल्जर भी हो, स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली विद्यमान है और आपके पास बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर और स्पष्ट चीजें थी, बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर था। और उसका एक सिंपल सा सबूत था कि कभी हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं तो कोई हमारे चीफ गेस्ट आने वाले होते हैं तो एक चीज जरूर आता है, एक फोन कॉल आता है कि आप चीफ गेस्ट के लिए एक ड्राफ्ट स्पीच दो। तो मैं इंतजार कर रहा था कब मेजर पंत का फोन आएगा और हमें एक ड्राफ्ट स्पीच बनाना पड़ेगा, लेकिन उसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसका कारण ही ये था कि आपको उसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके पास पहले ही बहुत भंडार है। तो सर, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस हियर सर। एंड जैसे आपने बोला भी है, आगे आप जरूर आना, हम सब आपके वी विल ईगरली वेट फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप व्हेनेवर इट हैपेंस। नेक्स्ट, हमारे बीच में जब हमारे रिस्पेक्टेड गवर्नर सर ऊपर आ रहे थे माउंट में, तो रास्ते में हमारा जो कॉम्प्लेक्स है शांतिवन जो फुटहिल्स पे है, तो वहां हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज राजयोगिनी बी के मोहिनी दीदी से मिल के आए। मोहिनी दीदी जी की हेल्थ थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकते थे। तो जब ये कार्यक्रम का फाइनल हुआ तो हम लोग ने हमारी एडिशनल चीफ राजयोगिनी बी के जयंती दीदी से रिक्वेस्ट किया था कि वो इस कार्यक्रम में आए, और उनका कन्फर्म था, करीब एक डेढ़ महीना पहले ये बात हो गई थी, लेकिन कोई कारणों से वो नहीं आ पाई। राजयोगिनी बी के जयंती दीदी को हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फ्लाइंग एंजल बोलते हैं, कि वो एक एंजल के रूप में है और सदैव चक्कर लगाती रहती है, पूरा यूरोप और विदेशों की बहुत सेवा करती रहती है। लास्ट मिनट में उनका नहीं आना हुआ तो हमने रिक्वेस्ट किया कि वो एक छोटा सा वीडियो मैसेज दे, तो एक 4 मिनट का उनका संदेश हम सबके प्रति है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये 4 मिनट का वीडियो आदरणीय जयंती दीदी जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से, उनसे हम सुनेंगे।
आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेल्फ एम्पावरमेंट एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोग्राम के लिए, तो मुझे मालूम है तो आपको बहुत बहुत अनेक वर्कशॉप्स और अनेक डिस्कशंस आदत तो प्राप्त होंगे ही। तो मैं थोड़ा सिर्फ सार में बताने चाहेंगी कि जबकि हम परमात्मा को याद करते हैं, और भारत में तो परमात्मा को जानना सहज होता, परंतु आप सब जो आए हैं, मुझे लगता है कि आप सबका किसी न किसी रूप से परमात्मा को जानने की मन में इच्छा होंगी और आपका प्रार्थना आदि का भी अभ्यास होगा। तो यहाँ पर जो आप अनुभव करेंगे कि आत्म स्मृति क्या है और आत्म स्थिति के द्वारा किस तरह से हम परमात्मा के साथ अपना पर्सनल संबंध जोड़ सकते हैं, जिस आधार पर परमात्मा जिसको हम कहते हैं सर्वशक्तिवान, उस द्वारा जब हम शक्ति प्राप्त करते हैं तो उससे अधिक एम्पावरमेंट क्या हो सकता। ये भी बात सही है कि आत्मा की जानकारी से जो अपने अंदर गुण छिप गए थे, आत्म स्मृति के द्वारा और परमात्मा की याद के द्वारा वो गुणों की उत्पत्ति होती है बहुत नेचुरल रूप से। तो जो सत्यता है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, ये सब गुण जैसे उत्पन्न होते हैं तो उसमें भी सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत सुंदर ढंग से होते, जिसके आधार पर जीवन बहुत सुंदर बेहतर बन जाती है। तो आत्म स्मृति द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट एक बहुत नेचुरल सहज रीति से आगे बढ़ना होता। और साथ साथ आजकल हम देखते हैं कि संसार की हालतें ऐसी है जिसमें बहुत चिंता भी रहती, कभी कभी डर भी होता, कभी कंफ्यूजन भी होता। और यदि इन बातों को हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है आत्मा के ऊपर, उसमें कई बार अपना ठीक बैलेंस नहीं रह पाता। तो उसमें मेंटल बैलेंस जो होना चाहिए वो ठीक रीति से नहीं काम करता। तो आज के सीन अनुसार लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। परंतु ज्ञानी आत्मा अपने तीसरे नेत्र से देख सकते कि हाँ, ये परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन के समय बहुत अपहीवल होता, परंतु परिवर्तित होकर के परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा अवश्य ही नया संसार आएगा। तो जब हम इन बात को याद रखते हैं तो मन में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ होने कारण बैलेंस रहता। कभी भी फिर उसमें डर या एंजाइटी या कुछ इस तरह के संकल्प चले, नेगेटिव थॉट्स, वो नहीं होते। जानते हैं कि इन सब बातों का अंत है और बहुत अच्छी तरह से नया संसार आएगा। और हमारी उसमें क्या जवाबदारी है, जितना हम अपने मन को शांत में रख कर के आगे बढ़ेंगे, जितना हम परमात्मा से बुद्धि योग रख करके अपने में शक्ति भरते जाएंगे, उतने जो हमारे अच्छे संस्कार है उसकी उत्पत्ति होने से नेगेटिव बातें अपने आप ही समाप्त हो जाती। तो मेंटल वेल बीइंग के लिए भी मुझे लगता है कि खुद की जानकारी, परमात्मा की जानकारी, समय की जानकारी, कर्म की जानकारी, इन सब बातों के आधार पर हम बहुत अच्छी तरह से अभी भी अपने जीवन को सुख शांति संपन्न बना कर रख सकेंगे। परंतु भविष्य के लिए भी हमें विश्वास है कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा और आगे परमात्मा के कार्य की संपन्नता अवश्य होंगी और नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया हम सबके लिए तैयार हो रही है। ओम शांति।
जयंती दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आते हुए भी वो हमारे बीच में आ गई। नेक्स्ट हमारे बीच में राजयोगिनी बी के सुदेश दीदी जी हैं। आप इस कैंपस के डायरेक्टर हैं, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। आदरणीय सुदेश दीदी जी का जन्म 1942 में हुआ। शी हैज बीन इंटरेस्टेड इन सोशल सर्विस सिंस द डेज ऑफ हर चाइल्डहुड। रेस्ड इन अ स्पिरिचुअल फैमिली, शी वॉज एजुकेटेड इन ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया एंड वेंट टू अटेन द बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस एट पंजाब यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। दीदी अल्टीमेटली एनकाउंटर्ड द ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इन 1957। फॉलोइंग द इंस्पिरेशन शी रिसीव्ड देयर, शी रियलाइज्ड दैट हर ट्रू डिजायर वॉज टू सर्व ह्यूमैनिटी एज अ स्पिरिचुअल सोशल वर्कर। इट वॉज इन लॉन्ग आफ्टर दिस दैट दीदी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट टू ओपन मेनी राजयोगा सब सेंटर्स एंड स्पिरिचुअल म्यूजियम्स इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज। इन 1974 दीदी वॉज सेंट टू इंग्लैंड, becoming part of the small group of founding members of Western Services. Shortly after her arrival, she became director of the Brahma Kumaris World Spiritual University Service Outreach within the United Kingdom, a duty which thoroughly acknowledges her ability to transfer to the West the profound spiritual experience of the East. Since then, she has traveled to over 100 countries, lecturing extensively on all facets of spirituality, the wisdom of Eastern philosophies with its practical application in everyday life. Moving to Germany in 1996, Didi has been the director of all the Brahma Kumaris World Spiritual University centers there and in Europe. A yogini of over 60 years, Didi is a living demonstration of the spirituality she strives to impart, a powerful inspiration to all who meet her. From November 23, she is the senior director of Gyan Sarovar Mount Abu and the joint chief of Brahma Kumaris. तो मैं आदरणीय सुदेश दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में हम सबके प्रति अपनी ब्लेसिंग्स दे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। मंच पर विराजमान मेरे अति स्नेही माननीय गवर्नर भाई साहब कहूं, भाई साहब कहूं, बाकी भाइयों को भाई साहब अथवा हीरों का हार सबको कहूं, और आप जो सामने बैठे हुए हैं ईश्वरीय परिवार के प्रभु के अति स्नेही चैतन्य सितारों को कहूं, या हमेशा ही स्वयं की रक्षा अथवा देश की रक्षा में तत्पर सबकी आशाओं के दीपक कहूं, सफलता के सितारे कहूं, आपको घर आप अपने आए हैं, ये परिवार में आप आए हैं तो वेलकम करने की तो बात ही नहीं, घर में आए हैं ना, इसीलिए बहुत 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 अपने ही परिवार में, अपने ही घर में, अपने ही भाई बहनों के साथ मिलने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये आपका भाग्य है, ये हमारी खुशी है कि हमारे भाई बहन भिन्न भिन्न स्थानों से अपने घर में पहुंचे हैं, और ये तो जरूर है कि हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का डर रहता है, चिंता रहती है, परेशानी है। अब मन को, सेल्फ को एम्पावर करें, माइंड को शक्तिशाली बनाएं। भाई साहब ने कहा माइंड के साथ साथ दिमाग को भी अच्छा बनाएं, परंतु थोड़ी इस बात में आपने बहुत अच्छे अच्छे बीज बोए हैं। बीज बोए, मेरा कहने का मतलब भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, वो मैं बीज के रूप में देख रही हूँ। मैं उनको थोड़ा जल डालूंगी ताकि उसको वो अच्छी तरह से फिर से बीज में जल पड़ता है, सूर्य की शक्ति मिलती है, वो फल देने वाला बन जाता है, और वो फल, उसका फल लेने के बाद फिर नया पेड़ उत्पन्न होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वास्तव में आत्मा जो है वो चैतन्य शक्ति है, ये तो आप हम सब समझते हैं, हम सब आत्मा है, चैतन्य है। पर आत्मा जब चैतन्य शरीर में है तो शरीर में रहते हुए उसका मन चलता है, संकल्प चलते हैं, शरीर से चली जाने के बाद भी शरीर में रहते भी शांति चाहिए, और शरीर छोड़ गई तो भी कहते हैं परमात्मा इनकी आत्मा को शांति देना, शरीर को शांति देना नहीं कहते, आत्मा शरीर छोड़ के गई। यह आपने कभी नहीं सुना होगा शरीर ने आत्मा छोड़ी, ऐसा कभी सुना? आत्मा ने शरीर छोड़ा। और यह भी सुना करुणा भाई जी ने कहा कि आत्मा की यादगार में ज्योत जगाते हैं। अब ज्योत आत्मा निकल गई तो आत्मा जिसको आप पावरफुल बनाना चाहते हैं, जिसकी चिंता को मिटाना चाहते हैं, जिसमें शक्ति भरना चाहते हैं, तन और मन की रक्षा करना चाहते हैं, परिवार अथवा देश की रक्षा के लिए आपने जीवन दिया है, समाज सुधार के लिए शिक्षा, अच्छे नागरिक तैयार हों ताकि वो सेवा अच्छी तरह से कर सके, वो कौन सी शक्ति है जिसमें ये सब बातें आए? तो मैं बताना चाहती हूँ कि आत्मा जब गई शरीर में से, तो जाने के बाद तो चली गई तो क्या सिखाएंगे उसको, शरीर में रहते सीखनी है ना। हम सब शरीर में रहते हुए जीवित हैं, हेल्दी हैं, समझदार हैं तो बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो समझने वाला आत्मा चली गई, मन काम कर रहे, आपका मन चल रहा है, जो आत्मा चली गई उसमें मन है, है मन नहीं, हार्ट है पर मन नहीं है। तो ये जो जोत जगाते हैं ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, यादगार बना हुआ है। हमने दीवा जगाया, जोत जगाई, लाइट लैंप लाइट जलाई, अब दीपक जगते ही कौन सी तीन चीजें प्रकट हो गई, कौन सी तीन चीजें प्रकट हो गई? लाइट प्रकट हुई, दूसरी चीज क्या प्रकट हुई? उस पर उंगली रखो, आग प्रकट हुई, तीसरी चीज उसकी लो प्रकट हो गई, रूप है भैया जग रहा है, ज्योति बुझ गई तो उसमें से बोलो खत्म हो गई, लाइट भी खत्म हो गई, हीट भी खत्म हो गई। तो लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। तो लाइफ में रहते लाइफ को बचाना है, लाइफ में रहते मन को शक्तिशाली बनाना है, और लाइफ में रहते दूसरी चीज, डेड बॉडी में दिमाग है, क्या चीज नहीं है? बुद्धि नहीं है, दिमाग अच्छा काम तब करता है जब बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धि निर्णय करती है, परखती है, समझती है, तब कर्म श्रेष्ठ होता है। फिर बुद्धि को ही ज्ञान चाहिए। भाई साहब ने कहा, गो धन गज धन बाज धन जबरत धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। पर वो ज्ञान किसको मिला, दिमाग को या बुद्धि को? ज्ञान धन, ज्ञान धन से समझ आ गया विनाशी चीज क्या है, अविनाशी चीज क्या है। तो सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है, और सबसे ऊंचा धन आत्मा का जो दिव्य संस्कार है, अथवा जो पवित्रता है, जो आत्मिक शक्ति है। हमारे दिव्य संस्कार कल्याणकारी हैं, तो स्वरक्षक भी रहेंगे और दूसरी आत्माओं को भी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता। तो आत्मा का जो स्वधर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, वो मन बुद्धि और संस्कार तीनों के साथ है। आत्मा गई तो संस्कार भी साथ ले गई, भाई बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ा भला था, सच्चा देव सेवक था, सच्चा दानी था, जेनरस था, बहन बहुत मीठी थी, बड़ी सेवादारी थी, कौन? शरीर तो पड़ा है, आत्मा चली गई तो मन बुद्धि संस्कार तीनों चले गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको आत्मिक स्थिति में स्थित होके फिर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने। जयंती दीदी ने भी यही बताया कि हमारा, हमको शक्ति कहाँ से मिलेगी? सर्वशक्तिवान से, परमपिता परमात्मा को याद करने से। उस याद का नाम योग है अथवा राजयोग है। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों में जब यूनिटी हो, तीनों शक्तिशाली हो, तो हमारे अंदर असली शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, आनंद की शक्ति, सुख देने की शक्ति, कल्याण की शक्ति, अब स्वकल्याण से विश्व कल्याण भरा हुआ है। तो पहले अपनी आत्मिक रक्षा, आत्मिक बल भरना है और अभ्यास से ही हर चीज पाई जा सकती है और समय सबसे बड़ा धन है। हर श्वास स्वस्थ देने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है। हर ज्ञान की शक्ति परिस्थिति को पार करने की और स्वस्थिति और परिस्थिति को मद पार करने में मदद करती है। इसलिए आप जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं, आपको हर प्रोग्राम में टिप्स मिलेंगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा सैंपल मिल रहा है, पर प्रैक्टिकल में जिस समय आप अच्छी तरह से समय देंगे, उस पर फिर साथ में विचार करेंगे, साथ साथ आपस में उसका लेन देन करेंगे और घर में वो प्रसाद के रूप में ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जैसे आपने दीवा आपका जग गया, तो जगे हुए दीवे से हजार दीवे भी आप जगाएंगे, आपकी लाइट कम नहीं होगी, आप उजाला ही उजाला करेंगे। तो इसीलिए आप लाइट हाउस माइट हाउस जो यहाँ बैठे हैं, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके जाए। और भारत को तो क्या, भारत वाज द लाइट हाउस, अभी भी लाइट हाउस कहलाता है, स्वर्ग अथवा सुख धाम था, तो फिर से इसी भारत को स्वर्ग सुख धाम वैकुंठ, जहाँ कोई दुश्मन नहीं है, जहाँ कोई दोष किसी में नहीं है, देवताओं का राज्य था। तो यहाँ से आप अपने अंदर ऐसी शक्ति भर के जाए जो हर एक नारी लक्ष्य रखे श्री लक्ष्मी बनने का, श्री नारायण बनने का। उसके लिए अपने अंदर के दुश्मनों को जीतने के लिए सरस्वती देवी बने, शक्ति दुर्गा स्वरूप बने, माँ लक्ष्मी स्वरूप बने और नर महावीर बने, गणेश बने, हनुमान बने। तो ये किसी भी प्रकार की हार हो नहीं सकती। रावण राज पर विजय प्राप्त करना गांधी जी का सपना साकार होगा। रावण राज, राम राज चाहिए, तो राम राज का मतलब रावण राज का तो मोह है। इसलिए मन के रावण को, मन के दुश्मन को न केवल मारें, विकारों को न केवल मारें, दस हिर कॉन्फ्लिक्ट को न केवल खत्म करें पर उसको जला देवें, तो आप सच्चे महावीर महावीरियों को हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया और ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हमारा जो नेशनल डायलॉग है सेल्फ एम्पावरमेंट एंड मेंटल वेलनेस, जो सेल्फ पार्ट स्व का परिचय, तो आत्मा का परिचय बड़े सहज शब्दों में दीदी ने बताया कि कैसे शरीर और शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति आत्मा और आत्मा की कैसे सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार है। भारत के कल्चर में तो ये सब हमको समझना थोड़ा इजी होता है। तो दीदी तो 1974 में जब विदेश गए तो बहुत छोटा सा ग्रुप था और पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को इस तरह से समझाना वो अपने आप में बड़ा चैलेंज था। लेकिन इतने वर्षों में वहां बहुत सारे ब्रांचेस है और जब वो लोग यहाँ आते हैं तो हमें भी वंडर होता है कि कैसे वो लोगों को भारतीय संस्कृति समझ में आती है, कैसे आत्मा का परिचय समझ में आता है, कैसे मेडिटेशन करते हैं। तो ये सब दीदी आप लोगों का त्याग और तपस्या का बल है जो कि उनमें इतना उन्होंने परिवर्तन लाया है। नेक्स्ट हमारे बीच में कोस्ट गार्ड से विशेष पधारे, कोस्ट गार्ड से इंस्पेक्टर जनरल टी शशि कुमार जी जो कि कमांडर है कोस्ट गार्ड रीजन हेडक्वार्टर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उनका संक्षिप्त परिचय है। आईजीटी शशि कुमार टीएम तटरक्षक मेडल, सर्व्स एज द कमांडर ऑफ द कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। ही एज्यूम द रोल ऑन July 27, 2024 आफ्टर होल्डिंग पोजिशन एज डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल एविएशन एट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स। प्रायर टू हिज करंट कमांड आईजी शशि कुमार सर मैनेज्ड की ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स विद इन द इंडियन कोस्ट गार्ड कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल प्रिपेयरनेस एंड एक्सरसाइज। कोस्ट गार्ड से संबंधित मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि कुछ बातें जैसे जयंती दीदी ने बोला कि आज लाइफ बड़ी अनसर्टन है, बहुत सडनली कई चीजें होती है, तो हमारे कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, जो लास्ट डायरेक्टर जनरल थे, श्री राकेश पाल जी, तो मैं समझता हूँ 2 साल पहले की बात है शायद, रक्षाबंधन पे हमारी बहनों ने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था कि हम आके आपको राखी बांधेंगे, तो वो कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, तो उन्होंने उसके अगले दिन शायद टाइम दिया, और जिस दिन उनको राखी बांधने जाना था उससे पिछले दिन वो चेन्नई में थे और चेन्नई से उनको आना था, तो अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया और वो उसी समय कोलैप्स हो गए। तो बहुत सडन हुआ, हमारी बहनें अगले दिन राखी बांधने के लिए जा रही है, लेकिन राखी की जगह ना उनके अंतिम संस्कार के प्रति जो सभा थी उसमें उनको एड्रेस करना पड़ा। तो कितना टाइम, कितना सडनली इवेंट्स चेंज होते हैं, और कैसे व्यक्ति को हर समय अपने आप को प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी चेंजेस हो, उसमें कैसे हम स्टेबल रह सके। और श्री राकेश पाल सर की विशेषता थी कि वो आध्यात्मिकता से बड़े नज़दीक से जुड़े थे, और हमारे जो एक प्रोग्राम दिल्ली के कैंपस में हम लोग नवंबर में करते हैं उसमें वो चीफ गेस्ट बनकर भी आए थे, और विशेष उनकी प्रेरणा से पूरे कोस्ट गार्ड में अलग अलग रीजन्स में भी उन लोगों के लिए प्रोग्राम्स कराएं। तो मुझे खुशी है सर कि कोस्ट गार्ड को आज रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में IGT शशि कुमार सर है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली गिव योर ग्रीटिंग्स फॉर दिस प्रोग्राम।
मैं जहाँ पे भी बोलता हूँ मेरा एक डिस्क्लेमर रहता है सर कि मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ, तो अगर मेरी हिंदी में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे प्लीज क्षमा करें। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, माननीय राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, मेजर जनरल अनिल चंडेल, प्रबंध निदेशक ECHS, राजयोगिनी BK सुदेश दीदी, संयुक्त प्रमुख ब्रह्म कुमारी एवं निदेशक ज्ञान सरोवर, स्क्वाड लीडर अशोक गावा, सेवानिवृत्त अध्यक्ष सुरक्षा सेवा विंग, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शुक्ला दीदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरक्षा सेवा विंग, ब्रह्म कुमारी दीपा दीदी, कैप्टन इंडियन नेवी शिव सिंह, बहुत अच्छा बोले एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दी गेस्ट हियर, एंड जो इन्होंने डायरेक्टर जनरल राकेश पाल के बारे में बोला, एंड अ वेरी वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ वेरी वेरी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी, एंड उनका बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा ब्रह्म कुमारी इसके साथ, एंड उनकी वजह से मैं कहूँगा कि कोस्ट गार्ड जो आज है, अगर आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें जो भी कोस्ट गार्ड में हैं आज, तो आधे से ज़्यादा उनकी वजह से है। और वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी जो भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी वेटरन्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वेटरन्स के लिए प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए, बिकॉज इनकी सेवा जो है ये सेल्फलेस रही है, एंड ये जो हमारा देश आज है वो इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ही है, और एक दिन मैं और बाकी जितने भी यूनिफॉर्म पर्सनल हैं हम भी वेटरन्स बनेंगे एक दिन, एंड वील बी ऑन द अदर साइड। आई जस्ट हैव अनदर 4 years टू गो, बट वी ऑल विल बी ऑन द अदर साइड, एंड जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसका ड्यू रिकग्निशन हमेशा मिलना चाहिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब इस प्रोग्राम का सिल्वर जुबली शुरू हो रहा था पिछले साल, जब यूनियन होम मिनिस्टर आए थे अमित शाह जी, तब भी मैं यहाँ मौजूद था, एंड आज जब 25th ईयर कंप्लीट कर रहा है ये प्रोग्राम, तब भी मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, तो इसलिए इट इज रियली अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी। मुझे यहाँ पर उपस्थित महानुभावों को संबोधित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आज का ये अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था के सानिध्य में एकत्रित हुए हैं जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया है। आज की रजत जयंती सालों का प्रभाव, परिवर्तन और कई जीवनों में हुए बदलाव का एक बहुत बड़ा उत्सव है। जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बोला, आज जब पूरे विश्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और हर कोई स्वयं को दूसरे से महान सिद्ध करने में लगा हुआ है, और ऐसे में ब्रह्म कुमारी का समानता, शांति, प्रेम और आनंद का संदेश किसी अमृत से कम नहीं है। ज्ञान सरोवर अकादमी माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी के राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन की सुरक्षा सेवा विंग आज सभी सिक्योरिटी सर्विसेज के बीच एक अलग पहचान बनाए हुए है। ढाई दशकों से ये विंग हमारे सुरक्षा कर्मियों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है, और ब्रह्म कुमारीज ने महिलाओं को नेतृत्व की अग्रणी भूमिका देकर समाज में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं अमृतवाहिनी इस महान संस्था के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जो 1930 के दशक से निरंतर समाज और मानव कल्याण के नेक कार्य में लगी हुई। पिछले 25 सालों में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने मैनेजमेंट, साइंस एवं स्पिरिचुअलिटी के बीच एक मजबूत पुल की भूमिका निभाई है। ऐसे समय में जब दुनिया हमें बाहर की ओर खींचती है, यह फाउंडेशन ने हमें भीतर की ओर यात्रा करना सिखाया है, जहां वास्तविक शक्ति विराजती है। हमारे सुरक्षा बल राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं, जो अत्यधिक दबाव एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके सामने सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक चुनौतियां भी होती हैं, और ऐसे स्थिति में दृढ़, स्पष्ट और संतुलित मानसिक स्थिति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को तनाव प्रबंधन, विचारों की स्पष्टता एवं इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने की मदद करता है। 3,20,000 से अधिक जवानों एवं 14,000 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि देशभर में फैली सकारात्मक परिवर्तन की तरंगें भी हैं। इस पहल को, जैसे बताया गया, गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा सराहना प्राप्त हुई है, जो इस बात का सूचक है कि संस्थागत ढांचे में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश कितना प्रभावी एवं प्रासंगिक है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण है। ये हमें स्मरण कराता है कि हम अधिक बेहतर, अधिक सजग, अधिक संतुलित और अधिक समन्वित कैसे बने। आज जब हम उत्सव मना रहे हैं तो हमें समझना होगा, दुनिया तेजी से बदल रही है, मानसिक स्वास्थ्य अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है एवं सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। यह रजत जयंती केवल एक पड़ाव नहीं बल्कि एक नई प्रेरणा बने, जो अपने उद्देश्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और अपने प्रभाव को और गहरा कर सके। मैं ब्रह्मा कुमारीज और सुरक्षा सेवा प्रभाग के उनकी निष्ठा, समर्पण और दूरदर्शी कार्यों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आशा करता हूं ये संवाद नए विचारों को जन्म देगा, सहयोग को मजबूत करेगा और हम सभी को आत्म सशक्तिकरण की ओर की इस ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं सभी ब्रह्म कुमारीज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
शुक्ला दीदी है, लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय चेयरपर्सन श्री स्क्वाडन लीडर रिटायर्ड अशोक गाबा जी भी हैं। 2001 में जब ये विंग बनी तो जो विशेष निमित्त बने वो स्क्वाडन लीडर अशोक गाबा जी बने। एक सेंटेंस हम कभी कभी सुनते हैं, वन मैन आर्मी, तो अगर वो बोलेंगे नहीं कुछ, है ना भाई जी वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगी दीदी, है ना? तो वन मैन आर्मी एक सेंटेंस हम सुनते हैं, तो उसका अगर सही में अर्थ समझना हो तो वो अशोक गावा जी की हमने जब उनकी 2001 से उनका मेहनत देखा, जब ये विंग नहीं था, जब फोर्सेस में एक नई बात थी, एक आध्यात्मिक कोर्स, आध्यात्मिक प्रोग्राम कैसे हम मिलिट्री में पैरामिलिट्री में करेंगे, तो पूरे भारत में वो चक्कर लगा के दौड़ दौड़ के कितनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उन्होंने ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को खड़ा किया। अनफॉर्चुनेटली आज से करीब 10 वर्ष पहले ऐसे ही एक सेवा में जब वो जा रहे थे तो ट्रेन में एक ब्रेन हैमरेज के कारण पूरा उनका आधा बॉडी पैरालाइज हो गया, उनका स्पीच लूज हो गया। आज उस घटना को 10 साल हो गए और उस समय अगर आप कोई उनको देखते तो ऐसा लगता नहीं था कि वो शायद कुछ सर्वाइव भी कर पाए, लेकिन 10 साल के बाद भी आज वो हमारे बीच में, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जब भी हो प्रोग्राम तो हमारे बीच में आ जाए, आपके आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी को, आप इस सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की सीनियर वाइस चेयरपर्सन है, आप दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में हरिनगर सब जोन से कनेक्टेड करीब 140 ब्रह्मा कुमारी ब्रांचेस का संचालन करती हैं। वहां दिल्ली में एक सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर, माउंट आबू के बाद सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, उनके आप डायरेक्टर हैं। करीब 1954 से आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदी से कि दीदी अपनी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए दे। आदरणीय शुक्ला दीदी जी।
ओम शांति। मंचा सिंह, सुरक्षा विभाग के महान हस्तियां और आदरणीय प्रातः अपने विशेष मेहमान गवर्नर साहब, जिनकी सद्भाव और सद्भावना की झलक, सत्वप्रधानता की झलक दिखाई देती है और ईश्वर के साथ अटूट संबंध की झलक भी दिखाई देती है, और सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन को, जीवन यात्रा को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए तन और मन का दुरुस्त होना, स्वस्थ होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तन और मन स्वस्थ नहीं है तो हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। और मन को सशक्त बनाने के लिए हमारे को कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे तन को सशक्त बनाने के लिए हमें चार बातों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है तन, मन और धन, और उसके साथ साथ जन। इनमें सक्षम होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ अपने जीवन के अंदर ये चार स्तंभ का अगर संतुलन हो तो क्या होगा, जीवन में संतोष रूपी धन भी रहेगा, संतुष्टता भी रहेगी, शांति भी रहेगी और आनंदमय जीवन भी होगा। परंतु अगर इसका संतुलन नहीं है तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जीवन को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए इनका संतुलन होना, जैसे तन का संतुलन होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है, इसी प्रकार मन का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे तन के लिए हम कहते हैं कि हमें स्वच्छता चाहिए, दूसरा संतुलित आहार चाहिए, तीसरा व्यायाम चाहिए और चौथा विश्राम चाहिए। ऐसे ही मन को दुरुस्त करने के लिए भी हमारे को इन चार बातों की बहुत बहुत जरूरत रहती है। कैसे, जैसे स्वच्छता, सबसे पहले स्वच्छता। परंतु हमारे अंदर स्वच्छ मन की स्वच्छता कब आएगी, जब सकारात्मक मूल्यनिष्ठ विचार होंगे तभी मन की स्वच्छता आएगी। इसी प्रकार आहार की शुद्धि, आहार में किस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आत्म सशक्तिकरण के साथ साथ वो प्रभु पिता को जितना जितना हम याद करते रहेंगे, उनके चिंतन में रहेंगे,
तो आहार की विशुद्धि यही हमारा आहार है श्रेष्ठ स्वस्थ मन के लिए। और वह्यांग क्या है, जितना जितना हम भौतिकवाद से ऊपर उठ करके आध्यात्मिकता की तरफ चलेंगे, आध्यात्मिक चेतना को अपने जीवन के अंदर जागृत करेंगे, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बना सकता है। और विश्राम, विश्राम है सबसे बड़ी बात, जो प्रभु अर्पणम। संसार में कुछ भी कार्य करो, सेवा करो, सुरक्षा में सेवा करो या कोई भी प्रकार की सेवा में महान डिग्री प्राप्त करते हुए भी सच्चा विश्राम उसी में है जब आप अपने आप को कार्य करते हुए प्रभु समर्पित करके चलेंगे, अर्पणम समर्पणम की भावनाओं को जागृत करके चलेंगे, तो उससे हमारा को बहुत सच्चा विश्राम मिलता है। तो इन चारों का हमारे जीवन मन को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है और ये प्रभु की देन है, शाश्वत है। इसमें कहते हैं जैसे भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही कल्याणकारी है, शिव ही सत्य है और शिव ही सब सुखों और शांति का दाता है। तो ऐसे ही जब हमारा योग उस परम पिता परमात्मा के साथ सच्चे हृदय से लग जाता है तो हमारे अंदर योदा से योगी बनने की भावनाएं जागृत हो जाती है। जब इतनी ऊंची मानसिक स्थिति हमारी बन जाती है तो कोई भी प्रकार की जीवन के अंदर चुनौतियां आती हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां मानव के अंदर आती हैं, परंतु अगर तन और मन दोनों ही स्वस्थ है, सकारात्मक है, तो उसमें वो सदा सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा। अब इतना जीवन में सफलता प्राप्त, हर चुनौती का सामना करने के लिए जीवन में सफलता अगर प्राप्त करना हम चाहते हैं तो उसमें आध्यात्मिकता की पुट, शक्तिशाली ज्ञान, व्यवहारिक सद्विवेक और आध्यात्मिक जीवन शैली का होना बहुत बहुत जरूरी है मन को स्वस्थ बनाने के लिए। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है क्योंकि आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराते कराते अंतर मन की ओर ले जाती है जहां हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और एकाग्रता जीवन के अंदर आ जाती है। जहां एकाग्रता आ गई वहां सफलता ही सफलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सुरक्षा विभाग में बहुत कई बहुत भाई बहुत ऊंच पद पर होंगे, कई दूसरे सेवादारी के रूप में भी होंगे, तो मैं उन सब से यही कहना चाहूंगी कि आध्यात्मिक शक्ति सर्व महान और उसमें भी संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जहां संकल्प शक्ति शुद्ध है, बढ़िया है, वहां फलदार पेड़ आ सकता है। और फलदार पेड़ जैसे दुनिया में बीज अच्छा है तो फल अच्छा निकलता है, इसी प्रकार संकल्प की शुद्धि और स्वच्छ होने के कारण हमारे अंदर अनेक अनेक गुणों का वास हो सकता है, जिस गुणों की हम सबको अपने जीवन के अंदर, स्वस्थ मन के अंदर, स्वस्थ शरीर के अंदर बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि जहां गुण है वहां शक्तियां भी है, वहां दुआएं भी है, वहां तपस्या भी है। तो अगर हम चाहते हैं अपने जीवन को एक अच्छा ऊंच और सुखदायी बनाएं, शांतमय बनाएं और सदा ही खुशनुमा रहें, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिकता को अपना साथी बनाना होगा और अपनी सोच को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सोच। क्योंकि जब तक सोच व्यक्ति की नेगेटिव है तो वो कभी भी ऊंच नहीं उठ सकता। अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना होगा। जितना नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी सोच बनती जाएगी और सद्भाव और सद्भावना हरेक के प्रति पैदा होगी, दया करुणा की भावना भी जब हमारे अंदर आती जाएंगी तो क्या है, जहां भी चाहे सुरक्षा विभाग हो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां हमारा को सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, इसलिए आध्यात्मिकता में सदा यही एक पाठ पढ़ाती है कि अपने आप को एक विशेष आत्मा समझो। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम उनके पुत्र हैं, हमारा अधिकार है, हम मात्र सर्वशक्तिमान है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर इतनी ऊंची समृतियों में रह करके कारोबार करेंगे तो जहां आपके कदम होंगे, जहां आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, वहां आपकी विजय ही विजय होगी। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं। और सोच का ऊंचा होना बहुत जरूरी है, जिस पर मेरे को एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक सन्यासी, बूढ़ा सन्यासी रास्ते में बैठा रहता था और बोलता था, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो लोग समझते थे इसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसे ही बोलता रहता है। और एक नौजवान बच्चे के अंदर ये संकल्प आया कि देखे ये क्या बोलता है, तो उसके पास जाके बोलता है, महाराज आप क्या बोल रहे हैं? कहा, मैं यही बोल रहा हूँ, जो सोचोगे सो बन जाओगे। कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा, तुम सोच के देखो। तो उसने अपने, हालांकि उसके पास पैसा ढेला कुछ नहीं था, परंतु उसने सोच लिया कि मैं हीरे का व्यापारी बनूंगा। अब वो फिर सन्यासी महात्मा को कहता है, वो पूछते हैं, सोचा? तो कहा, मैं सोच लिया मैं हीरे का व्यापारी बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि देख, तुम अपना राइट हैंड दिखाओ, उसे लिख दिया समय, और कहा लेफ्ट हैंड दिखाओ, उसे लिख दिया धैर्य। अब वो दोनों सन्यासी के सुझाव को लेकर के एकांत में जाकर के बैठ के सोचता है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं और मैं हीरो का व्यापारी कैसे बन सकता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। पर काफी सोचने के बाद उसने यही सोचा, क्यों ना मैं हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी करता हूँ। तो वो वहां से उठा और जा करके किसी ऐसे विशेष हीरो के व्यापारी के यहाँ उसने नौकरी की। उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, क्योंकि उसको ना तो पैसा था और ना ही कोई इस बात की समझ थी, तो भी उसने समय का सदुपयोग किया और अपने अंदर वो धैर्यता भी रखी, गंभीरता भी रखी कि मुझे एक दिन ये कला को सीखना ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे आपको सुनाते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो एक दिन हीरो का व्यापारी बन गया। इसी प्रकार आप सबके अंदर भी जो तमन्ना है कि हम संसार में आए हैं तो कुछ विशेष पद को प्राप्त करें या प्रगति करें, उन्नति करें, विकास को प्राप्त करें, तो उसके लिए एक ही बात मैं आपको सुझाव के रूप में देना चाहूंगी कि दृढ़ता होगी और उसके साथ साथ हिम्मत होगी और विश्वास होगा। जहां विश्वास है, दृढ़ता है, वहां संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है, जिसका साक्षात्कार हमने इस संस्था के अंदर देखा। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कैसे विकट परिस्थितियां इसके सामने आई, परंतु एक बल, एक भरोसा, निश्चय और दृढ़ता और परमात्म पिता की याद में रहते हुए मन वचन कर्म की शुद्धि करते हुए आज ये बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। और जहां पर डिप्रेशन होता है तो आज लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के पास जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज शांत रहना, सुखमय रहना और खुशनुमा जीवन जीने के लिए सत्य ज्ञान का बोध कराती है। जितना सत्य ज्ञान को बुद्धि, आत्म ज्ञान को बुद्धि में रखते जाएंगे, परमात्म पिता की याद में स्थित होते हुए कर्म करते जाएंगे और मन वचन कर्म का शुद्धिकरण होगा, उतना ही कदम कदम आगे बढ़ते जाएंगे। कहते हैं एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिला के चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएगी। तो मेरी आप सब के प्रति यही शुद्ध भावना है, शुभ भावना भी है और शुभ कामना भी है कि आप यहाँ से राजयोगा मेडिटेशन का जो अभ्यास यहाँ पर सवेरे सवेरे कराया जाता है उस अभ्यास को थोड़ा ध्यान पूर्वक अटेंड करेंगे और उस प्रसाद को अपने साथ लेकर के जाएंगे और रोज सवेरे शाम इसका अपने स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, शुभ चिंतन, आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करेंगे, उनके साथ सच्चा संबंध जोड़ेंगे तो आपके पास महान शक्तियों का वास हो सकता है। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है।
दीदी ने बहुत सारी बातें बताई, विशेष एक दृढ़ता की बात बताई। तो जहाँ दीदी रहती है हरिनगर, उसके पास में तिहाड़ जेल है, तो दीदी की बहुत एक दृढ़ इच्छा थी कि वहाँ जो कैदी है हम उनकी भी सेवा करें। तो 1991 के आसपास किरण बेदी जब आईजी तिहाड़ जेल बनी तो उनके साथ मिलकर कैदियों के लिए प्रोग्राम्स करते थे और कैद तिहाड़ जेल के अंदर एक मेडिटेशन सेंटर बनाया और वो सेवाओं का रिजल्ट है कि आज पूरे भारत में कई सारे प्रिजन्स हैं जहाँ की ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती है और कैदियों के लिए प्रोग्राम्स करती है और कैदियों का जीवन परिवर्तन करती है। तो ये दीदी की बहुत बड़ी दृढ़ता की शक्ति है, उनको देखकर आपको उनका उम्र का अंदाजा नहीं होगा। दीदी अभी 90 साल हो रहा है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी 90 साल हो रहा है और एक बड़े धूमधाम से पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 90th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और दीदी का भी ये 90th ईयर है। तो दीदी का कंटिन्यूस हमारे मोटिवेशन रहता ही है। लास्ट में आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं, हमारे बीच में आदरणीय दीपा दीदी है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन कराए। दीदी मुंबई से आई है, आप बैचलर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट है मुंबई यूनिवर्सिटी से, परिचय तो उनका बहुत बड़ा है, बट मैं एक लाइन में बोलूं तो आज शायद कोई भी ऐसी सिक्योरिटी फोर्स नहीं है जहां दीदी ने कोई ना कोई प्रोग्राम्स नहीं कंडक्ट किए। तो निरंतर वो चक्कर लगाती रहती है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, करीब करीब सारी सिक्योरिटी फोर्सेस में आपने प्रोग्राम करा। आदरणीय दीपा दीदी जी।
ओम शांति। सम्माननीय मंच, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि, हमारे आदरणीय गवर्नर महोदय जी, हमारे आदरणीय मुख्य मेहमान जो आए हुए हैं, बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए, और हमारी आदरणीय दीदियां जिनकी उपस्थिति ही तपस्या की मूर्ति के रूप में है और हमें बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। हमारे आदरणीय भ्राता जी, आपने बहुत सारे सुंदर विचार सुने सबसे और ये जरूर प्रेरणा प्राप्त की कि हमें आध्यात्मिकता को एक जीवन शैली में लाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप सब तो भारत की इतनी सुंदर सेवाएं कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के लिए इतना प्यार से, दृढ़ता से, समर्पण भाव से आप सेवाएं कर रहे हैं, आपके परिवार का भी कितना सुंदर योगदान है इन सेवाओं के लिए, तो ऐसे तो हम आपके लिए नतमस्तक हैं और बहुत बहुत हमें खुशी है कि आज आप यहाँ हमारे साथ हैं। हम ये राज्योग की सुंदर अनुभूति शिक्षा के रूप में यहाँ रोज सीखते हैं, जो परमात्मा बहुत प्यार से हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और बुद्धि को उस ईश्वर के साथ जो परम रक्षक है और वो आत्मा के सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है, उसके साथ हम जोड़ें। क्योंकि साइंस हमें कहता है कि जब दो ऊर्जाओं का मिलन होता है तब ऊर्जा का संचार ऊंचाई से नीचे के तरफ होता है, हायर टू लोअर। और इसलिए जब जब हम अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा की याद में समाते हैं तो परमात्मा से हमें अनेक दिव्य शक्तियाँ, गुणों की प्राप्ति का अनुभव होता है। और यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे राजयोग एक जीवन शैली बन जाए। सिर्फ थोड़े समय के लिए हम बैठकर सिर्फ इसका अभ्यास जरूर करें लेकिन जीवन शैली बन जाए, अर्थात सुबह से लेकर रात तक हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान की बातों के प्रभाव में रहे। और इसलिए दैनिक रूप में यहाँ हम इसको परमात्मा से शिक्षा के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सहज राजयोग, बहुत सहज विधि से हमें ये राजयोग का अनुभव कराते हैं। आज कुछ समय के लिए मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी। हमारे सामने हमारी दोनों आदरणीय दीदियां हैं जो वास्तव में तपस्वी मूर्तियां हैं। उन्होंने वर्षों का उनका योग तपस्या का अभ्यास है। वो अपने आत्मिक स्नेह की दृष्टि से आपको निहाल करेंगी। उनके पावरफुल वाइब्रेशंस हमें बहुत सहयोग देंगे और हम कुछ क्षणों के लिए मन को ईश्वर के पास ले जाएंगे। जैसे आप यहाँ बैठे भी अपने परिवार को याद कर सकते हैं, तो यहाँ परिवार मौजूद नहीं है, लेकिन मन से जब अपने बच्चों को याद करते हैं तो हम उनको देख भी रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ मन से अपने आप को देखेंगे, अपने उस आत्मिक स्वरूप को महसूस करेंगे और मन रूपी मुख के द्वारा परमात्मा से संकल्पों की भाषा के द्वारा वो सुंदर मिलन का अनुभव करेंगे। तो चलिए कुछ विचारों के द्वारा हम मन को अपने अंदर की ओर ले जाएं, आवाज की दुनिया से, इस बाह्य जगत से कुछ समय के लिए मन को न्यारा कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। कुछ समय के लिए अपने आप को अपने कारोबार से, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने संबंधों से, अपने दैनिक कर्मों से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मन को अंतर की ओर दिशा देते हैं। मन की आंखों से देखते हैं कि हम यहाँ इस सुंदर सभा में अकेले बैठे हैं, निश्चिंत होकर परमात्मा के सुंदर घर में, इस साइलेंस के वातावरण में अकेले बैठे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। रोज हमने आईने में अपना बाह्य स्वरूप देखा है। जिस बाह्य स्वरूप को हमने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व समझा, लेकिन आज हमने ये बात तो समझ लिया कि शरीर जो है ये ईश्वर की बहुत महत्वपूर्ण देन है। मन से ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें स्वस्थ शरीर दिया है और ये शरीर हमारे लिए एक साधन के रूप में है, एक सुंदर वाहन के रूप में है, व्हीकल के रूप में है। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला मस्तक के मध्य में एक सुंदर सितारा है, शांति का सितारा। मन की आंखों से मस्तक के मध्य में आत्मा रूपी आध्यात्मिक शक्ति को देखें। मन की आंखों से मैं आत्मा, एक दिव्य सितारा, शांत स्वरूप हूं। मन की आंखों से देखें कि सुंदर सितारे से शांति के वाइब्रेशंस, शांति का शुद्ध प्रकाश मस्तक से लेकर सारे चेहरे में और धीरे धीरे सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है। अंतर में वो शांति को अनुभव करते हुए हम महसूस कर रहे हैं कि शांति मेरा अपना स्वभाव है, ये मेरा निज गुण है, मेरा स्वधर्म है। इस शांति की अनुभूति में समाते हुए अब कुछ समय के लिए इस आवास की दुनिया से पार उस शांति के सागर परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। एक उड़ते हुए पंछी के समान, जैसे वो पंछी अपनी उड़ान गगन की तरफ ऊंची उड़ान भरता है, ऐसे ही मन की आंखों से देखें मैं सुंदर आत्मा इस शरीर से न्यारा होकर इस आवाज की दुनिया से पार मन बुद्धि के विमान में बैठकर एक मुक्त पंछी के रूप में उस शांति की दुनिया के पास पहुंच जाते हैं, प्रकाश की दुनिया, अंतर चक्षु से, मन की आंखों से इस शांति की दुनिया को देख रहे हैं। सुनहरी लाल प्रकाश का ये महातत्व परम धाम शांति धाम जहां चारों तरफ शांति शांति है। अंतर चक्षु से देखें कि मैं आत्मा एक सुंदर सितारा जो शांति की आभा में प्रकाशित है। मैं अपने शांति के बेहद के घर में पहुंच चुका हूं। चारों तरफ अनेक सुंदर सितारे चमक रहे हैं, शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इन अनेक सुंदर सितारों के बीच एक दिव्य सितारा मुझे अपनी ओर खींच रहा है, बहुत प्यार से अपने पास बुला रहा है। परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा का मात पिता, जैसे ही हम ईश्वर के सानिध्य में पहुंचते हैं, मन की आंखों से उस परम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देख रहे हैं। परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा के समान ही एक सुंदर दिव्य सितारा है, जिसकी शांति की शक्तियों की आभा, उनका प्रभा मंडल चारों तरफ फैल रहा है। वो शांति का सागर है, परमात्मा पिता की शांति की लाइट, शांति का प्रकाश मेरे मन में हृदय में समा रहा है। परमात्मा से इस असीम शांति की अनुभूति मेरे अंतर मन को सुकून से भरपूर कर रही है। मेरे मन के अंदर जो चिंता है, जो बोझ है, जो सूक्ष्म में भय है, दुख है, दर्द है, वो सब कुछ मैं ईश्वर पिता को सौंप देता हूँ। परमात्मा की असीम शांति को अपने अंदर समा लेता हूँ। परमात्मा पिता, आप प्यार के सागर हो, आप शक्तियों के स्रोत हो। परमात्मा का पवित्र शुद्ध निर्मल प्यार, अनकंडीशनल लव मेरे मन को सुकून शांति दे रहा है। परमात्मा का प्यार मुझे अंदर से शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस कराता है। मैं जानता हूं कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा माता पिता भी है, मेरा सच्चा जीवन साथी भी है, मेरा परम रक्षक भी है। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा का असीम प्यार, उनकी दिव्य शक्तियां, उनकी असीम शांति एक सर्किल ऑफ डिवाइन लाइट के रूप में, एक सुंदर सुरक्षा कवच के रूप में मेरे चारों तरफ है। मैं परमात्मा की इन शक्तियों की छत्र छाया में, इन वरदानों की छत्र छाया में सुरक्षित हूं। परमात्मा मुझे सदा विजयी भाव का वरदान दे रहा है, मुझे बहुत प्यार से कहता है कि मैं सर्वशक्तिवान परम रक्षक बनकर तुम्हारा सदा साथी हूं। देश सेवा में आपका हर कदम आगे जैसे जाता है, आपका हिम्मत का कदम और परमात्मा पिता की पदम गुणा मदद शक्ति सहयोग सदा आपके साथ है। परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियां एक छत्र छाया बनकर सुरक्षा कवच बनकर सदा आपके साथ है। मन से परमात्मा को अपना साथी बनाकर उस सर्वशक्तिवान को अपना सहयोगी बनाकर उनके असीम प्यार को उनकी दुआओं को अपने अंदर समाते हुए अपने आप को सशक्त शक्तिशाली भरपूर और ब्लेस्ड फील करते हुए हम पुनः अपने आप को यहाँ इस संगठन में देख रहे हैं, पुनः अपने आप को यहाँ इस सभा में महसूस कर रहे हैं। आंखें अगर बंद हैं तो खोल देते हैं। हम अपने आप को यहाँ अपने साथियों के साथ महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन में परमात्मा से प्राप्त की हुई ब्लेसिंग्स शक्तियां असीम शांति को एक खजाने के रूप में साथ में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।
दीपा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ क्षणों के लिए थोड़ी सी गाइडेड मेडिटेशन से भी कैसे हम सबको गहन शांति का अनुभव कराया। और यही राजयोग मेडिटेशन की विशेषता है कि थोड़ा सा भी व्यक्ति से सीखता है तो किसी भी जगह पे इन विचारों से अपने मन को शांत कर सकता है। तो आप अगले 3-4 दिन में इसके ऊपर और भी सीखेंगे और बहुत सहज विधि है, हर कोई उसे सीख सकता है और अपना सकता है। तो कार्यक्रम के अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में हमारी दीदियां हैं तो जो हमारे विशेष अतिथि हैं उनका सम्मान करें। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल गवर्नर सर को, हमारी सुदेश दीदी शॉल पहनाकर और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का मोमेंटो, ये दो चीजों से हमारे आदरणीय गवर्नर जी का सम्मान करें। और शुक्ला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोमेंटो जो ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय है पांडव भवन का एक मोमेंटो है वो देकर सम्मानित करें। शुक्ला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पांडव भवन जो मुख्यालय है उसका मोमेंटो देकर सम्मान कर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में एमडी ईसीएचएस है मेजर जनरल अनिल चंदेल, इनका भी सम्मान करें आदरणीय सुदेश दीदी जी शॉल के साथ। और SSW का मोमेंटो और हमारे MD ECHS भी एक मोमेंटो अपना सुदेश दीदी और शुक्ला दीदी को दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुदेश दीदी जी से कि हमारे बीच में IG टी शशि कुमार जी हैं, उनका भी सम्मान एक शॉल और SSW मोमेंटो से करें।